ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका चय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप विश्व भर में सब भाषाओं में उपलब्ध और उसके अंतर्गत यहाँ कृष्ण मंदिर रानीबाग में कृष्ण गोपाल सोरी और परिवार ने अपनी माता की समृद्धि में 7 दिवस से भागवत के सत्संग का आयोजन किया था। आज पूर्णाहुति का दिवस है और आप सब श्रद्धालु नित्य उत्साह के साथ पधारते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं इस मंदिर समिति और यहाँ के विप्रवरों का जिन्होंने अच्छी व्यवस्था को बना के रखा है। और यही मंदिरों का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ हरि कथा और हरि कीर्तन मानव मात्र के कल्याण के लिए होता रहे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के कल भगवान के मुख मंडल 10वें स्कंद के मुस्कुराते हुए मुख का हमने बाल लीलाओं का श्रवण किया जो भगवान ने गोकुल में की थी, वात्सल्य प्रेम के भक्तों के लिए जो भगवान को अपना बालक समझते हैं उनसे प्रेम करना चाहते हैं उसके लिए भगवान ने बाल लीलाओं ऐसी अद्भुत बाल लीलाएं करके और जो भगवान से ये संबंध स्थापित करना चाहते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया। और जो बाल लीलाओं के उपासक होते हैं वो भगवान के मुख का दर्शन करने में रस लेते हैं क्योंकि भगवान के मुख को माता हमेशा देखना चाहती है, चूमना चाहती है। तो उनके रसास्वादन के लिए भगवान के मुख का ध्यान होता है अधिकांश। और जो भगवान के सेवक होते हैं वो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। दास्य भक्ति में मुख्य रूप से चरणों का महत्व होता है कि भगवान के चरणों कमलों में हमारा प्रेम हो। और आज हम संक्षेप रूप से भगवान के सखाओं के साथ गौचारण और वत्स चारण, वत्स का मतलब गाय के बछड़े, ये लीला उनकी वृंदावन में जो हुई है 3.5 साल तक इसका श्रवण करेंगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण की नंदगांव में जाने के बाद 7 साल के गोवर्धन पूजा के बाद जो ब्रज की अंगनाओं के संग में जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहती थी, माधुर्य रस में कृष्ण उनका प्रीतम था, वो उनकी प्रेमिकाएं थी। और कल इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया था कि ये कोई लड़कियां नहीं, स्त्रियां नहीं, ये तो भगवान के अंग अंग से प्रकट राधा रानी का काया व्यू है। तो भगवान ने अपने से अनेक बनाकर उससे रस आस्वादन कर रहे हैं। तो उनके संग रास विहार आदि की लीलाओं का वर्णन करेंगे। और फिर भगवान 11 साल के होते हैं तो वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, और उसके बाद उनको धर्म स्थापना का और विशेष रूप से असुर संहार का कार्य शुरू होता है। और 17-18 साल तक मथुरा में रहते हैं, और उसके बाद जरासंध के साथ 17 बार युद्ध करने के बाद 18वीं बार वो मथुरा को भी छोड़कर समुद्र के बीच में द्वारका में अपना नगर बसाते हैं, और तब भगवान वहाँ 100 साल तक रहते हैं। उस अवधि में महाभारत का कुरुक्षेत्र में युद्ध भी होता है, और उसके बाद भगवान की द्वारका की लीलाएं होती हैं। तो इस प्रकार दशम स्कंद के दो विभाग होते हैं, पहला विभाग मथुरा लीला तक है और दूसरा विभाग द्वारका लीला का है, उत्तर को उत्तर अर्ध कहते हैं। और फिर 11वें और 12वें स्कंद में मुक्ति और निरोध का वर्णन संक्षेप में करके आज कथा को पूर्ण आहुति पे पहुंचाएंगे। तो सखाओं की लीलाओं में भगवान, जैसे कल एक बात कही थी उसको ध्यान देना चाहिए, कि एक बालक की सुरक्षा के लिए पूरा गोकुल का गांव खाली कर दिया गया, घर जमीन जायदाद जो भी थी सब छोड़ा, अपनी गायों को साथ लिया और चल प्रॉपर्टी को साथ लिया, संपत्ति को बैलगाड़ियों में सब। नंद बाबा उठे तो बरसात तो रावल से वृषभानु भी अपने गायों को लेकर वहां से चले, और दोनों वहां से आए, जमुना को पार किया, और जहां आज हम यहां से जाते हैं हाईवे से आगरा हाईवे जो पुराना है उससे अंदर मूर्ति है वृंदावन के लिए, उसको छत्तीगढ़ कहते हैं। तो छत्तीगढ़ का नाम है कि जहाँ छकड़े खड़े किए आके नंद बाबा ने, तो वहाँ आके डेरा डाला था। और यहाँ से भगवान खेलने जाते थे तो जहाँ अपना कृष्ण बलराम मंदिर है इसको रमन रेती कहते हैं, इस रेती में भगवान खेलते थे। एक रमन रेती गोकुल में जब बचपन में वहाँ खेलते थे, जहाँ उन्होंने मिट्टी आदि खाई, वो रमन रेती कहलाती है। वो रेती का मतलब ब्रज की वो धूल जिसमें भगवान खेले हैं उसको रमन रेती कहते हैं। तो पहली लीला जो भगवान जैसे आए तो 4 साल के हो गए, और 4 साल के हो गए तो बछड़े चराने के लिए ग्वाल बाल साथ जाने लगे। तो बहुत अच्छा संकेत ये मिलता है कि वैदिक भारतीय संस्कृति में 4-5 साल का बच्चा बाप के काम में हाथ बटवाना शुरू करता था। अब जब गायों का धंधा है, अब गौ ये तो सब गौपाल हैं, तो बछड़े चराने जाना ये बच्चे बचपन से शुरू कर दिया, और 5 साल के तो हुए गाय चराना शुरू कर दिया। तो एक बहुत अच्छी बात समझ में ये आती है कि पुराने ज़माने में वैदिक संस्कृति में किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती थी, बच्चे अपने पूर्वजों के कार्य को बचपन से शुरू करते थे। अभी बच्चे 10वीं पास नहीं करते हैं, तब तक वो अपने पिता के काम को अच्छी तरह से जान लेते समझ लेते थे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, न किसी की नौकरी करने की जरूरत थी, ऐसे ये परंपराएं चलती रहती थी। और बच्चियां जो लड़कियां घर में होती थी तो 5 साल की हो गई तो माँ के काम में हाथ बटाना शुरू करती थी, तो ये परंपराएं थी, उसमें माता पिता को सुख मिलता था। आजकल का न बच्चा बाप का काम करता है न बेटी माँ का काम करता है, वो बेचारी दोनों को परेशानी उठानी पड़ती है, और वो किसका काम करते भगवान जाने, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन भगवान ने यहाँ ये बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि मैं पिता के गाय के बछड़ों को चराने के लिए जा रहा हूँ। और जब बछड़े चराने गए तो पहला जो असुर आया उसको वत्सासुर कहते हैं, बछड़े के रूप में असुर आया, तो भगवान ने उसको पहचान लिया और उसको बलराम जी को कहा, दाऊ दादा देखो ये आया तो है असुर लेकिन बछड़े का रूप धारण करके आया है। और कहाँ आया था ये, जमुना के उस तट में जहाँ बंसी बट है, वहां वत्सासुर का भगवान ने वध किया है, जहां आजकल भांडीर वट है, तो वहां भगवान ने उस बछड़े को पूंछ पीछे से पांव से पकड़ के घुमाया और दूर फेंका और गिरते ही वो तो असुर हो गया। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा आपने हमारे आराध्य बछड़े का आपने हत्या हो गई कृष्ण, आपको तो अभी स्नान करना पड़ेगा त्रिवेणी संगम में जाके। तो भगवान ने एक कूप हुए कुआं वहां अपनी बांसुरी से खोदा, उसका नाम है त्रिवेणी कूप। ये त्रिवेणी कूप आज भी भांडीर वट में है और सोमवार के दिन अमास आती है तो उसमें पहले दूध जैसे प्रकट होता था, लोग जाके सुबह स्नान करते थे, सवेरे 4 बजे जाके स्नान करते हैं, आज भी लोग वहां जाते हैं। और ये कुआं तो लुप्त हो चुका था बहुत पहले, अब दोबारा इसको जिन्होंने बरसाने को दोबारा प्रकट किया नारायण भट्ट गोस्वामी ने, ये त्रिवेणी कूप को पुनः प्रकट किया है। तो त्रिवेणी कूप आज भी जाके भांडीर वट में, जहां ब्रह्मा जी ने आकर राधा और कृष्ण का विवाह कराया जब वो 4-5 वर्ष के भी नहीं थे, तब वो ब्रह्मा जी ने आके जहां वेणी पढ़ी थी वो स्थान भांडीर वट में है, वहीं ये त्रिवेणी कूप है। तो ये भगवान का पहला वत्सासुर का उद्धार है जो जो धोखा देने के लिए आया था। पहला भगवान ने किसका उद्धार किया? पूतना का। श्री कृष्ण ने पूतना किया और रामचंद्र के अवतार में पहला उद्धार किसका हुआ? ताटका का। तो दोनों स्त्री के रूप में आई थी, लेकिन इसका शास्त्रों में आचार्यों ने अर्थ निकाला है दोनों अविद्या है, और जब तक अविद्या का नाश नहीं होता तब तक कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकता है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने तो पूतना को लिखा है कि झूठ मूठ के गुरु, जो लोगों को भगवान न मिलाकर संसार में आई थी दूध पिलाने और लगा के आई विष। तो ऐसे बहुत से विषयों में डालने वाले गुरु होते हैं जो भगवान के चरणों का अमृत नहीं पिलाते हैं लेकिन विषयों के अंदर लोगों को लिप्त कर देते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। तृणामर्त ऐसा आया था, दूसरा वो काम का रूप है, काम थोड़ी देर के तूफान की तरह आता है, किसी को भी उड़ा के ले जा सकता है। तो भगवान ने उस काम रूपी असुर का वध किया। और अब वत्सासुर जो दोखा बछड़े के रूप में बछड़ों के बीच में आ गया असुर बनकर, और इसके बाद मुख्य लीला जो होती है उसको अघासुर वध कहते हैं। उससे पहले एक दिन भगवान ने एक बगला आया, बगले के रूप में भगवान को गले में ले गया और भगवान ने गले में इतने गर्म हुए उसने बाहर डाल दिया। भगवान ने उसकी एक चोंच पे पांव रखा, श्री कृष्ण ने दूसरी चोंच को ऐसे पकड़ के जैसे दांतन के दो दाने टुकड़े करते हैं ऐसे करके फेंक दिया। ये पूतना का भाई था बकासुर, ये दंभ है, देखने में बगला खड़ा होता है सफेद जैसे भगवान का ध्यान कर रहा है लेकिन मछली को ढूंढता है कि कब नजर आती है कि उसको पकड़ लूं। तो ये दंभ रूपी असुर बकासुर के बाद अघासुर की लीला का थोड़ा वर्णन करेंगे, क्योंकि अघासुर की लीला अघ कहते हैं पाप को, तो पाप के रूप में असुर आया अजगर बन के। लेकिन ये कथा लीला ऐसे शुरू होती है कि एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण ने सब ग्वाल वालों को कहा कि कल हम अभी बछड़े चराने जाते थे ना, तो छोटे बच्चे थे, भोजन साथ नहीं ले जाते थे, दोपहर को वापस घर आ जाते थे, भोजन आके घर करते थे, ये उनका नेम था। लेकिन आज कहा कि कल वन में भोजन करेंगे, कल हरेक अपने घर से बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन पका के लाए, कल हम वापस घर नहीं आएंगे और वन में भोजन करेंगे, कल हमारा बहुत बड़ा वहां पिकनिक होगा। तो ये रात को सबको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दे दी और सब ने अपनी माताओं को कहा कि बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, आज हमारे सब वन में खाएंगे। सब माताओं ने जो भी कचौरी पूरी लड्डू जो भी बनाना था सबने बनाया। और रस में बहुत कथाएं करते लेकिन अपने पास समय का अभाव है। मधुमंगल ने अपनी माँ को कहा उभर तू ब्राह्मण क्या बना के जाएगा, तुम्हें तो सभी खिला लेंगे, अपने को क्या बनाने की जरूरत है, ब्राह्मण तो 10 घरों का मिल जाता है, एक घर का काय के लिए खाएगा। तो दूसरे दिन सुबह पहले भगवान श्री कृष्ण ने उठ के अपना सिंह बजाया, भगवान के पास शंख वादन होता है अपने भक्तों की रक्षा के लिए, लेकिन ग्वाल वालों के संग जाते हैं तो एक सींग होता है उसको बजाते हैं, और जैसे सींग बजाया सब सोए हुए बच्चे जाग के खड़े हो गए कि कृष्ण हमको बुला रहा है, और सब उठ के तैयार हो गए। ये भगवान ने एक और बहुत अच्छी शिक्षा दी कि जो नेता होता है, जो बड़ा होता है उसको सबसे पहले आगे खड़ा होके सबको तैयार करना चाहिए। हमारे पास नेता घर में सोए होते हैं, काम वाले काम करते हैं, जब आखिर में काम पूरा होता है तब नेताजी प्रकट होते हैं। तो ये सिद्धांत तो भारतीय संस्कृति का नहीं है। वैदिक संस्कृति में युद्ध भूमि में भी राजा पहले आगे खड़ा होता था, ध्वज लगा होता था और सैनिक पीछे लड़ते थे। अब तो राजा तो घर में सोया हुआ था, बेचारे सैनिक लड़ते हैं। तो ये जो संस्कृति है ये बिगड़ चुकी है। तो भगवान ने संकेत किया कि मैं अगर सबका बड़ा हूँ, नेता हूँ, तो पहले मुझको उठना चाहिए और सबको जगाना चाहिए। और सबने अपनी माँ के दिए हुए टिफिन को अपनी लाठी में टांगा और अपने अपने बछड़ों को आगे किया और सारे ग्वाल पाल लिए बेअंत बछड़ों को लेकर वन के अंदर गए। और वन में गए तो एक दूसरे के भोजन को देखते हैं क्या क्या लाया है, और एक का डब्बा लेके फेंकते वो उतर जाता है दूसरे को। ये बच्चों ने थोड़ी देर खेल कर दिया और खेल करते करते आंख मचोली की, एक दूसरे को गेंद से खेले। और फिर अचानक भगवान श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट गए और सारे सखाओं ने देखा कि एक अद्भुत कोई गुफा पहाड़ की दिख रही है। और पहाड़ कहाँ से, गुफा तो है नहीं, हम रोज यहाँ बछड़े चराने आते हैं, ये गुफा कहाँ से आ गई? और ये तो पहाड़ों की दोनों तरफ से कतारें पड़ी और बीच में लाल लाल रोड बना हुआ है। तो असल में क्या था, ये बड़ा अघासुर, बड़ा सा एक अजगर जिसका मुंह बड़ा गुफा जैसा लग रहा था, दांत पहाड़ियों की दांतों की पंक्तियां पहाड़ियां लग रही थी और लाल लाल जबान जैसे रोड बना हुआ है। तो इनके मन में आया कि कौतूहल अंदर जाके देखें गुफा में है क्या। तो अंदर जाते हैं तो अंदर से गरम गरम दुर्गंध वाली हवा आ रही है, क्योंकि कोई पशु खा के आया होगा। फिर भी उनने लगा कि अंदर जाएं देखें। तो सबने कहा कुछ हो गया तो ग्वाल वालों ने कहा हमारा कन्हैया पीछे है ना, क्या होगा, जो होगा कन्हैया हमारा है ना। इसको कहते हैं उन बच्चों को ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर बचपन में इतना विश्वास था कि कन्हैया है। और सभी अघासुर के मुंह में चले गए और पेट में पहुंच गए और भगवान ने देखा कि अरे ये मेरे सखा सारे पाप के पेट में चले गए। अघ का मतलब पाप होता है। देखो आपको कोई पुरस्कार दे आपको हमको नहीं चाहिए तो हो सकता है, लेकिन किसी को दंड दिया जाए, कोई कहे कि तुम्हें दंड नहीं लेता हूं, ऐसे नहीं हो सकता है, पाप भोगना ही पड़ता है। और ये पाप के पेट में सारे सखा चले गए और भगवान ने कहा अब क्या करना चाहिए। भगवान भाग तो और अघासुर मुंह खोल के बैठा था कि बाकी ये कृष्ण रहता है, ये आ जाए तो मुंह बंद कर दूंगा। और आज बलराम जी गए नहीं, आज बलराम जी का जन्म नक्षत्र था और मां रोहिणी ने कहा बेटा आपकी पूजा होनी है, आप मत जाइए। बोले ऐसे क्यों करते हैं? बोले जब भगवान को किसी सांप के साथ लीला करनी होती है उस दिन बलराम जी का वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलराम अनंत से है, कोई सांप आएगा नहीं तो लीला होगी नहीं, तो भगवान की लीला में बाधा न पड़े इसलिए उस दिन बलराम गए नहीं। अब श्री कृष्ण भागते हुए सीधे अजगर के मुंह में गए अपने सखाओं को बचाने के लिए। ऐसा कोई मित्र दुनिया में नहीं हुआ है जो किसी को पाप से बचा सके, और पाप के पेट में चले गए हैं और भगवान अंदर गए और अब बच गए। अब अघासुर ने समझा कि मैं मेरी बहन पूतना मेरे भाई बकासुर का बदला लेता हूं और इसको अभी मैं मुंह बंद करके मार देता हूं और कंस को सुनाऊंगा कि तुम्हारे शत्रु को मैं समाप्त करके आया। भगवान अघासुर के गले के पास पहुंचे तब थोड़ा सा अपने को ऐसे फुलाया और अघासुर का गला हो गया बंद। अघासुर का गला बंद हो गया तो उस गले बंद से उसका दम घुटने लगा और अघासुर का सर फट गया। और भगवान तो बाहर निकले, सारे ग्वाल बालों को भगवान ने अमृत दृष्टि डाली, वो सब जैसे नींद से उठे हैं और सबके देखते देखते अघासुर की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया। ये देखकर यमराज ऊपर बेहोश हो गया कि अघासुर इतना बड़ा पापी, इसको मुक्ति वो मिली जो योगियों को नहीं मिलती, भगवान के आत्मा इसकी भगवान के अंदर प्रवेश कर गई। और ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हुए कहते हैं अरे बड़ा आश्चर्य हुआ, अघासुर का भी उद्धार हो गया। भगवान ने कहा जो पूतना मेरे को दूध पिलाने आई उसको मैंने मां का स्थान दिया, अब उनके भाइयों का भी तो उद्धार करना चाहिए ना। पूतना के ब्याज से भगवान ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। एक भगवान की सेवा करता है तो भगवान लाखों को उद्धार कर देते हैं। अब अघासुर का तो उद्धार हो गया और सब ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया अब तो बहुत खेले थक गए, अब भोजन करना है। तो वन में भोजन करने बैठे, बीच में श्री कृष्ण बैठे, आठ सखा मुख्य बैठे, फिर 16, फिर 32 ऐसे कमल दल की तल बैठे और सबको कृष्ण दिखाई दे रहा है और सब समझ रहे हैं कृष्ण। और हरेक अपनी पोटली से निकाले, कहे कृष्ण पहले चखे, अरे बड़ा रसगुल्ला अच्छा है कन्हैया, मेरी माँ ने बनाया, तू खा के देख तो। और तब तक मधुमंगल बोला पहले ब्राह्मण को अर्पण नहीं करोगे, ऐसे खा जाओगे, हमको भी तो देना चाहिए। अब वो भगवान को जूठा कोई खिला रहा है, कोई उसके हाथ से, कोई कह रहे लये तो छाछ मेरी मान है, ये रबड़ी मेरी मान है। अब ब्रह्मा जी ने देखा, देखूं तो सही और क्या चमत्कार होता है, अघासुर का उद्धार हो गया, ये तो नेम से के विपरीत है। और ये हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसको वेदों से के मंत्रों से जिसकी पूजा करते हैं, और यहां ये माखन चोर है, कहते हैं मक्खन चुराता है, तो मैं जाके देखूं तो सही कि क्या हो रहा है। और उधर आके हंस के ऊपर चढ़ के देखते हैं तो ग्वाल बालों के बीच में जूठा एक दूसरे का झपटा सीनी झपटा झपटी करके खा रहे हैं। भगवान ने कहा हम यज्ञ के अंदर सोहा करके बुलाते हैं तब तो आते नहीं है खाने के लिए, और यहाँ ग्वाल बालों के बीच में छीना झपटी करके खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और भगवान ने दिल में कहा कि मुझे कहते हैं माखन चोर। ब्रह्मा तो चार वेद पढ़ा हुआ है, तीन तीन बार पढ़ा हुआ है, वो तो चोरी नहीं कर सकता है ना। आज मैं ऐसा लीला करूंगा कि ब्रह्मा डबल चोर बन जाएगा, फिर मेरे को चोर क्यों कहेंगे लोग, ब्रह्मा को चोर आज बना दूंगा मैं। और ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं एक और लीला भगवान की देखूं क्या कर सकता है, और ब्रह्मा ने बछड़े चुरा दिए और ब्रह्मा जी चोर हो गया बछड़ों का। भगवान तो मक्खन चुराता था लेकिन ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के चले गए, तो भगवान की लीला में बड़े बड़े विद्वान भी चोर बन गए और ब्रह्मा जी चोर बन गया। अब तो भगवान ने कहा मुझे क्यों चोर कहते हो, ब्रह्मा जी चोरी कर रहा है जो आपका परपिता सबको पैदा करने वाला है ऐसा। और अब ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, सब कृष्ण के मुख को देख रहे थे, अचानक कृष्ण के मुख से दृष्टि हटी और अपने बछड़ों की ओर देखा तो वही पुरानी कहानी, दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। अरे कन्हैया हमारे बछड़े, कन्हैया ने कहा घास खाने कहीं दूर निकल गए होंगे, आप भोजन करो मैं ढूंढने जाता हूं। ये पुनः भगवान एक नेता की मर्यादा सिखा रहे हैं कि जो बड़ा है उसको काम अपने सर के ऊपर उठाना चाहिए। भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए गए, बछड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। भगवान ने कहा ऐसे कितने जंगल में दूर कभी जा नहीं सकते हैं, तो भगवान ने कहा ये विधाता विधा ब्रह्मा विधि का काम है, ब्रह्मा जी ने ये बछड़े चुराए हैं, कोई बात नहीं मैं जाता हूं ग्वाल बालों को कहता हूं कि हम बछड़ों का प्रबंध करते हैं। वहां आके देखें तो ग्वाल बाल भी नहीं है, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी चुरा के ले गए। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे बछड़े चुरा ले हैं, क्या देखना चाहते हैं, तो अब हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाएं। तो ब्रह्मा जी किस काम में बहुत बड़े प्रवीण है, कौन सा अच्छा करने आता है ब्रह्मा को काम, सृष्टि करने आता है। तो अगर हमको ब्रह्मा जी को ही हराना है तो मैं सृष्टि ऐसी करूं जो ब्रह्मा जी से अच्छी हो। भाई उसी काम में आप जो दूसरे को से बढ़ोगे, जो काम आपको आता है और उसको भी आता हो, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर को डॉक्टर हाएगा तो ये तो कोई कंपटीशन हुई नहीं ना, डॉक्टर की डॉक्टर से होगी, इंजीनियर की इंजीनियर से होगी। तो सृष्टि करने में ब्रह्मा जी सृष्टि कब करता है, जब जीवात्मा भगवान देता है, उनके कर्म देता है और उनका शरीर बनाने की मसाला सारा देता है, पांच भूत देता है, तब ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी तो रीसेंबल करता है, मसाला सारा सामान सारा भगवान देते हैं, ब्रह्मा जी सिर्फ उसका रीसेंबलिंग करता है, सामान कुछ बना के बना। भगवान ने कहा मैं ऐसी सृष्टि करने जा रहा हूं, मैं ही अपने आप से बगैर जीव आत्मा के, जितने ग्वाल बाल है उतने ग्वाल बाल बन जाता हूं, जितने बछड़े है उतने बछड़े बन जाता हूं, जितनी लाठी है उतनी लाठी बन जाता हूं, जितने टिफिन है उतने टिफिन के डब्बे बन जाता हूं, अब जितना सामान जैसा लाए थे, जैसा स्वभाव था बच्चों का, जैसा स्वभाव था गायों के बच्चों का, ये सब अकेले कृष्ण बन गए और वापस शाम को लौटे तो गाय अपने बछड़ों को प्रेम से चाट रही है और माए अपने बच्चों को गोद में लेके बैठी है, बड़ा सुख मिल रहा है उनको। तो इस लीला में भगवान की बहुत से उद्देश्य थे, एक उद्देश्य मुख्य ये था। सारी माताएं कहती थी यशोदा का भाग्य सदा गोद, कृष्ण उनकी गोद में खेलता है, हमारा तो दूध पिया नहीं। तो भगवान ने कहा आज ब्रह्मा जी की इस लीला से मैं एक साल तक सब ग्वाल छोटा बच्चा बन के सब गोपियों के घर में रहूंगा, उनका बच्चे का सुख उनको दे दूंगा। आज कृष्ण सबके घर में बच्चा बन के बैठे। और सब गायियां कह रही थी कि हम, वो तो सिर्फ कोई नंद बाबा की गाय का दूध पीता है, हमारे को रोज हमारा दूध नहीं पीता है। भगवान ने कहा सारे बछड़े बन गए हैं और कृष्ण ही बना है, और सारे ब्रज के गाय बहुत प्रसन्न है कि उनको जो गाय भगवान को दूध पिला रही है उसको भगवान पूतना को मुक्ति दे दी, जो विष देने आई थी। जो गाय भगवान को दूध पिलाती है उसको भगवान क्या देंगे, और जो गोपियां भगवान को दूध पिलानी है उसको भगवान क्या दे सकता है, तो फिर यशोदा को क्या देगा भगवान। भगवान के पास कुछ देने को है नहीं, अपने आप को दे देता है और कुछ है नहीं उसके पास, क्योंकि मुक्ति तो पूतना को भी दे दी, तो कितने भाग्यशाली है। और इस वर्ष में, इस साल में शांडिल्य ऋषि ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इस वर्ष में जो भी कन्याओं का विवाह होगा वो कभी विधवा नहीं होंगी, तो जितनी भी गोपियां बच्चियां थी उन सब का विवाह ग्वाल बालों के साथ हो गया, तो वो सारे ग्वाल बाल कृष्ण था, कोई और था ही नहीं, तो सबके सब का विवाह कृष्ण से हुआ। इसलिए रास लीला में जहां गोपियां आती हैं वहां शब्द है वधु, कि इन सबका विवाह कृष्ण से पहले ही हो चुका था, क्योंकि उस एक साल पूरा ये लीला चली है। अब हुआ क्या इसके बाद, एक साल तक तो सब सुख से बैठ रहे हैं, बाकी चार पांच दिन बचे हैं साल पूरे होने में। बलराम जी एक दिन देखता है गोवर्धन के ऊपर बछड़े चरा रहे हैं, तो गायों ने एक साल में दूसरे बछड़ों को जन्म दे दिया, ग्वाल गाय चरा रहे हैं और ये बछड़े चरा रहे हैं, तो पुराने बछड़े एक साल उनकी तरफ गाय दौड़ती हुई आ रही, अरे घर में छोटे बछड़े उनको दूध पिला के आई है तो एक साल बड़े बछड़े को दूध गाय कैसे पिलाएगी। और गाय रुकी नहीं रुकती है गोवर्धन से, ग्वाले रोकने का प्रयास कर रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं कि लड़के यहां बछड़े लाए क्यों, जहां हम गाय चला रहे हैं वहां ही बछड़े क्यों लाए, ये तो मुसीबत पैदा कर दी। और जैसे बछड़े वहां पहुंचे गाय दूध पिला रही है, और ग्वाला पीछे पहुंचे तो उनको क्रोध भूल गया, सब गले मिले, सब बच्चों को प्रेम कर रहे हैं। ये देख के बलराम जी कहता है ये कैसे कभी हुआ नहीं है, वो क्या रहा है। बलराम जी ने थोड़ा ऐसे ध्यान लगा के देखा तो सब चतुर्भुज रूप में सारे बछड़े जो है चार हाथ वाले विष्णु का रूप है, ये सारे ग्वाल बाल चार हाथ वाले विष्णु का रूप है। बलराम जी ने देख के कहा कन्हैया ये क्या है, कन्हैया कुछ बोले नहीं, बोले चुप दाऊ, ये चार माथे वाले ब्रह्मा जी का काम है, वो ले गया असली। बलराम जी ने, मेरे को भगवान की माया तो कभी मुझे प्रभावित कर नहीं सकती, ये है क्या, माया नहीं है ये तो भगवान की अपनी लीला है। और ऐसे करते करते ब्रह्मा जी वापस चले, अपने जा रहे थे सत्यलोक में, ये चुरा तो लिए, और चुरा के यहाँ जहाँ चोमुहा जहाँ आता है हम जाते हैं, यहाँ से वृंदावन के बीच में पहले एक जगह चोमुहा आता है, चोमुहा मतलब चार मुंह वाला ब्रह्मा जी, यहाँ के एक ब्रह्मा कहीं जाके बछड़े छुपा के चला गया था ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में अपने काम के लिए जा रहे थे, भागवत में नहीं लिखा है लेकिन बड़े भाव से कथाकार अन्य स्थानों से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी अगर अपने लोक में चले गए और बैठ के वहां काम में लग गए तो मैं कब तक घास खाता रहूंगा बछड़ा बनकर और ब्रज में ऐसे डोलता रहूंगा, तो क्या करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा बन के पहले ही जाके बैठ गए और कहा सत्यलोक में कि एक और नकली ब्रह्मा आता है यहाँ आए तो धक्के मार के निकाल देना, अब ये असली ब्रह्मा अंदर जाए तो सबके देख कहाँ जा रहे हो, अंदर बैठा है ब्रह्मा जी, नकली हो, निकलो यहाँ से। अब ब्रह्मा जी परेशान के मेरे लोक में और कहाँ से ब्रह्मा आया, वो ब्रह्म में पड़ गया, वापस आके देखे तो बच्चे, अरे ये बछड़े यहाँ है, ये ग्वाल बाल यहाँ है, और देखे तो कन्हैया कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के संग, और एक ग्वाल बाल और एक सेट ग्वाल बछड़ों का, फिर देख के जाए अरे ये असली है कि वो असली है, पता नहीं लगे कौन से असली हैं। दो सेट दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी का माथा घूमने लगा, ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया। भगवान ने थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी को ऐसी दिव्य दृष्टि दी, वो देखा कि आश्चर्य, ये तो भगवान ने अपने आप से सब कुछ बना दिया। ब्रह्मा जी वो सब बछड़े और ग्वाल पाल लाया और भगवान ने अपना रूप था उसको अलोप कर दिया, और फिर ब्रह्मा जी बैठ के भगवान को प्रार्थना करने लगे। सर लोट लोट के भगवान को प्रार्थना ऐसी अद्भुत की है। ब्रह्मा जी की 14वें अध्याय में प्रार्थना का बहुत रसास्वादन किया जाता है। भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं, ये भी नहीं कहा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं कहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना करके वापस चले गए। तो ये ब्रह्मा जी की विमोहन लीला कहलाती है, जिसमें भगवान ने बहुत से कार्य सिद्ध किए, और इसको अघासुर उद्धार की लीला कहते हैं। इसके बाद भगवान ने जमुना के अंदर काली नाग का उद्धार किया, नाग पत्नियों को अपनी भक्ति थी, और उस काले नाग के सर के ऊपर भगवान ने नृत्य किया, 99 फन थे और 100 बड़े फन थे और छोटे छोटे उनके ऊपर था थी करके ऐसा नृत्य किया कि उसके सर के ऊपर भगवान के चरणों के निशान हो गए, और सारे ब्रजवासियों को पता लगा तो आके किनारे पे खड़े हो गए और अंदर कूदने वाले थे, लेकिन बलराम जी ने सबको रोक दिया। उस दिन बलराम जी नहीं गए थे क्योंकि कालिया भी सांप है। और तब कालिया की पत्नियां कहती हैं कि कृष्ण ये आपका द्वेषी था, हम चाहती हैं कि चाहती थी कि मर जाए तो अच्छा है, लेकिन अब आपके कृपा से इसके सर के ऊपर जो आपने नृत्य किया है इसका विष सब निकल चुका है, अब हम आपको प्रार्थना करती हैं कि इसको जीवन दान दे दो। और नाग पत्नियों की प्रार्थना से भगवान ने उनको भक्ति दी, और कालिया से नीचे उतर के खड़े हुए कालिया प्रार्थना करता है कि मैं तो सांप हूं, ईर्ष्या करना द्वेष करना आपने ही मुझे बनाया ऐसा है, मैं अब क्या कर सकता हूं, आपने मेरे को जूनी ऐसी दी है जिस जूनी के अंदर दूसरे से ईर्ष्या करना वो तो जाता नहीं, अब आप जो दंड दें। भगवान ने कहा यहां से निकल जाऊं, आपको यहां नहीं रहना है जमुना के किनारे। बोले कहां जाऊं, बोले जहां से आए थे, कहां से आया था, कौन से द्वीप से आया था कालिया, जहां अब कौन सा द्वीप, इसकी प्रश्न पूछते ये एक अध्याय पूरा है कि ये कालिया या कौन था, क्यों आया था यहां। तब कहते हैं पहले जहां अभी फिलिपीन है, फिलिपीन कौन सा, और फिजी, फिलिपीन नहीं फिजी, और द्वीप का नाम क्या था उसका उस वक्त, रमणीक द्वीप, रमणीक द्वीप, रमणीक द्वीप में ये सांप सब रहते थे, और गरुड़ को एक सांप देना होता था, जब गरुड़ को इसकी बारी आई तो ये और सांपों को वहां से गरुड़ को दिया नहीं, गरुड़ के भय से यमुना में आके रहा, क्योंकि गरुड़ यमुना में आ नहीं सकता था, सौबरी मुनि का शराप था उधर गरुड़ को, इसलिए यहां आके रहा था। भगवान ने कहा वापस रमणीक द्वीप चले जाओ, बोला वहां गरुड़ खाएगा, बोला आपके सर के ऊपर मेरे चरणों के निशान है, और गरुड़ ये आपके सर के ऊपर मेरा ठप्पा लगा हुआ देखेगा, अब दूर से तुम्हारे को प्रणाम करेगा, तुम जाके वहां मौज करो और यहां से निकलो। तो कालिया वापस रमणीक द्वीप चला गया, और रात को सारे ही ब्रजवासी जो ग्वाल बाल थे उधर सो गए। देवताओं ने रात को वहां अग्नि लगा दी कि सुबह उठेंगी गायें यहां घास खाएंगी और पानी पिएंगी, ये तो विशीला कालिया का है, मर जाएंगे, इसलिए वहां आग लग गई। भगवान ने रात को आग को पी लिया, और दूसरे दिन सुबह ग्वाल बाल तो अपने घर गए, और ये अपने बछड़े लेके चराने के लिए चले गए जहां आज अक्रूर घाट है, जहां बाथरोड का मंदिर है कहते हैं, वहां ग्वाल बाल कहते कन्हैया आज घर से आए नहीं, सुबह का तो नाश्ता कलेवा किया नहीं, भोजन लाए नहीं, हमको बड़ी भूख लगी, अब क्या करें। भगवान का देखो सामने ये मथुरा के बड़े चतुर्वेदी ब्राह्मण जो है ना यज्ञ कर रहे हैं, इनको जाके बोलो बलराम जी, क्योंकि वो तो क्षत्रिय है ना, वसुदेव का पुत्र है, और कृष्ण भूखे हैं, कुछ दे दो। तो ग्वालवाल ने कहा ब्राह्मणों बलराम कृष्ण यहाँ पास में गैया चराते बछड़े चराते आए हैं और ये गैया अभी बीच में दो शब्द कहना इतना ठीक है, ये जब बछड़े वापस असली ग्वाल घर में आए तो उन्होंने कहा कृष्ण ने हमको एक बड़े अजगर के पेड़ से बचा लिया और तब एक साल हो चुका था और सबने जाके देखा वो अजगर का खाली खोखा वहां पड़ा था उसमें बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद 5 साल हो गए तो भगवान ने कहा गैया चराना शुरू, और गैया जब चरा रहे थे तब वो काली नाग का दहन हुआ। तो अब गैया को चराते हुए वहां गए तो ब्राह्मणों ने मना कुछ बोला नहीं, ना हाँ कहा ना ना कहा और कुछ दिया भी नहीं। वापस लौट के कहते हैं ग्वाल माल के हम भूखे हैं कन्हैया, कुछ नहीं दिया ना हाँ कहा ना ना कहा, बस सुहा सुहा कर रहे हैं। अब भगवान ने कहा आप इनकी पत्नियों के पास चले जाओ और उनको कहो कि कृष्ण और बलराम ने भेजा, अब आगे नाम मेरा लेना। तो सारी ब्राह्मण पत्नियां थाल पूजा के जो प्रसाद के थे लेकर आई और कृष्ण बलराम और ग्वाल वालों के सामने रख दिया। और यहाँ कृष्ण अपने ग्वाल के कंधे के ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठे हैं और उनको देख के ब्राह्मण पत्नी तो वो इतने उनके भक्ति में विभोर हो गई। और भगवान कहते हैं आप ब्राह्मणी हो, आपको हमने भक्ति दे दी, अब आप वापस चले जाओ। आप बोला नहीं हम आपके पास आई, अब वापस कैसे जाएं, अभी तो पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, यज्ञ में बैठे हुए हैं और यज्ञ की सारी सामग्री आपको हमने दे दी। बोला नहीं नहीं अब आपने हमको संतुष्ट किया, आपके पति भी आपकी पूजा करेंगे, आप वापस पति पर चले जाओ। और ब्राह्मण पत्नियां जैसे वापस आई हैं और यज्ञ कुल में तो ब्राह्मण कहते हैं हमको धिकार है, हम इतना वेद पढ़ा इतना यज्ञ किया लेकिन भगवान की सेवा के लिए उनके भक्त आए हमको उनको कुछ को दे नहीं पाई, और आप घर रहती न पेट बात पे वेद पढ़ा न पाठ पढ़ा और भगवान की सेवा करके हम तो आपको प्रणाम करते हैं, आपके कारण भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ये भगवान ने पहली एक लीला की है कि ब्राह्मणों को अनुकूल किया कि अब भगवान श्री कृष्ण को आगे चल के रासलीला करनी, तो भगवान रासलीला करेंगे तो कौन उसके ऊपर ऐतराज कर सकते हैं, एक ब्राह्मण कह सकते हैं कौन भाई बच्चे को ये रास क्यों कर रहा है। आज ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं ये तो साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और आप अपनी पत्नियों को कहते हैं आप भाग्यशाली हो कि उसका दर्शन और उसकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम पंडित ऐसे ही सब न कर पाए जो आपने कर लिया, तो ब्राह्मण अनुकूल हो गए। यहां भगवान ने बलराम के साथ वन के अंदर पेड़ों को झुका हुआ देखा तो कहा बलराम जी देखो ये आपको फल देना चाह रहे हैं, और फिर भगवान कहते हैं देखो ये पेड़ ब्राह्मणों से अच्छे हैं, फल देते हैं छाया देते हैं लकड़ी देते हैं वो, और उनकी उनकी तुलना करके कहते हैं वो ब्राह्मण अब अनुकूल हो गए तो अब किसको अनुकूल करना चाहिए, अब देवताओं को अनुकूल करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला से पहले और कुछ असुरों का वध होता है, आज हमारे पास वो भागवत का एक ही पुस्तक में सारा दशम स्कंद की लीलाएं हैं कृष्ण परम पुरुष भगवान, क्योंकि सारी लीलाएं तो 90 अध्याय पूरी कर नहीं पाएंगे, जिस भाग्यशाली को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए तो वो छोटा पुस्तक पढ़ सकता है, हम तो संक्षेप में सबको हाथ लगा के जाते हैं, लेकिन रोज रोज एक अध्याय पढ़ेंगे तो 3 महीने में पूरा होगा और साल में 4 बार पूरा होगा, और ये करते रहेंगे तो ये लीलाएं भगवान की आपके सोपन में आती रहेंगी और आपका जीवन कृष्णमय होता जाएगा। ये तो प्रतिदिन लीला पढ़ने का रात को नियम बना देना चाहिए। भागवत तो पूरा है लेकिन अकेला किताब जो है वो भाग्यशाली, आज लीलाओं को अगर निरंतर पढ़ने का नेम बनाना है तो बहुत अच्छा सबसे अच्छा सरल और उत्तम भगवान की भक्ति का साधन है। सो कथा कहाँ कर रहे हैं कि इसके बाद देवताओं को अनुकूल करना है, कैसे गोवर्धन पर्वत का धारण करेंगे, अब तो इंद्र जब अनुकूल हो जाएगा तो रासलीला करने में देवता कोई भी विविधान नहीं डालेंगे, और उसके बाद बड़े बड़े गोपों को अनुकूल करेंगे, तो इन तीनों को अनुकूल करेंगे तब रासलीला की भूमिका बनेगी। तो इस बीच में कात्यायनी देवी के व्रत रखा है, सब गोपियों ने कहा हमको कृष्ण पति के रूप में मिले, और जिसने जिस दिन व्रत पूरा हुआ है उस दिन नहाने जमुना पे गई है और भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल जो उन गोपियों के भाई हैं उनके संग वहां गए हैं, उनके वस्त्रों में भी एक वस्त्र कहते हैं दुपट्टा दुकूल, जिसके 2 पट्टे होते हैं उस वस्त्र को कहते हैं, जैसे ये ओतरी होती है जिसके दो पट्टे होते हैं, तो ये चुनड़ी जैसे होती है, उसको दुकूल चोरम, दुकूल दुपट्टा, ये सब चुरा के ऊपर रख दिए और गोपियों को आश्वासन दिया कि जिस काम के लिए आपने कात्यायनी देवी की पूजा की है आपका मनोरथ आने वाली शरद ऋतु में मैं पूरा करूंगा। और इसके बाद गोवर्धन पूजा वाला दिन आता है, 7 साल का कन्हैया हो गया है और सुबह देखे को बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। पूछा जाके बड़े गोपों से, पिताजी नंद बाबा ये काय की पूजा हो रही है? बेटा ये तो हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसाद करता है, हम तो ग्वाले हैं, हमको गायों के लिए घास चाहिए, पानी चाहिए। भगवान कहते हैं इंद्र का काम है प्रसाद करना, जो हम अपना काम करते हैं, इंद्र अपना काम करते हैं, इसमें इंद्र को पूजा करने की क्या जरूरत है? और नहीं नहीं हमारा तो पुराना ये रवाज है, ये तो हमारी परंपरा है। बोला कौन से शास्त्र की परंपरा है, कहाँ लिखा है ऐसे? हमारे पास ऐसी कितनी घरों के अंदर परंपराएं चल रही हैं जिसका कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है। इतने हमने भूत देवी देवता बनाए हैं जो भी शास्त्र में नाम निशान नहीं है। ऐसे लोगों ने चलती फिरती इतनी परंपराएं परेशानी वाली बनाई है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बन चुकी है। वो एक उदाहरण सिर्फ इसलिए देते हैं कि ये परंपराएं कैसे बनती हैं बगैर सोच समझ के। जब पुराने जमाने में विवाह होता था ना लड़के का, तो जब वो अपनी पत्नी के साथ पहली बार घर में प्रवेश होता था तो सास बहू के लिए लाल पानी कुंकम का भर के रखती थी थाल में कि ये लक्ष्मी आ रही है, इसके पांव के निशान घर में पहले पड़ने चाहिए। तो विवाह करके दरवाजे पे लड़का और लड़की खड़े थे और ये सास लाने में देर कर रही थी और बहू देख रही थी कर क्या कर रही है, देर कर रही है। तो अचानक बहू की नजर पड़ी तो एक बिल्ली थी उसके ऊपर सास ने एक छाबड़ा ढक दिया, एक टोकरी पड़ी थी वो ढक दी, फिर जल्दी जल्दी आई और पानी लाल रख दिया और बहू गई पानी में, कुमकम के पांव आ गए घर में, लक्ष्मी घर में पहुंच गई। आजकल कोई करता है कि ये घर में कोई बहू आती है कोई लक्ष्मी है, इतनी बड़ी ईड़ी वाली पहन के आई उसका निशान कैसा होगा, लक्ष्मी वाला निशान तो होगा नहीं। पहले तो बहुत बड़ा सम्मान के साथ स्वागत होता था कि लक्ष्मी आ रही, अब इसको बेटा हो गया, इसका बेटा बड़ा हो गया, वो 25 साल के बाद उसकी शादी हो गई। अब वो बहू बाहर खड़ी है और ये कह रही है बिल्ली लाओ। अरे बिल्ली को क्या करना है? बोला मैं शादी हुई थी तब मेरी सास ने बिल्ली को टोकरे के नीचे रखा था, तो मैं कैसे ले जाऊं पहले पानी, पहले बिल्ली लाओ टोकरा लाओ तब जाऊंगी, अब देर हो रही है। तो सास अभी जिंदा थी। बोला बहू देर क्यों कर रही है? बोला बिल्ली नहीं मर रही है सास, टोकरा किसके ऊपर ढकूं? बोला क्यों? बोला जब मैं आई थी आपने ढका था। ओ बोलती है वो अंदर मिठाई खुली पड़ी थी बिल्ली खराब न करे इसलिए उसको टोकरे के नीचे ढका था, ये कोई हमारा कोई मंत्र वेद थोड़ी पढ़ने। तो ऐसे कुछ कहीं किसी ने कर लिया तो सब उसके पीछे पड़ गए, अब उसकी पूजा हो रही है। किसकी पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पता नहीं, कौन सा देवता है कौन सी देवी है पता नहीं, कौन सा शास्त्र है पता नहीं। तो ऐसी कितनी तथाकथित बातें, वो भगवान ने यहां तर्क करके कहा नहीं होगी इंद्र की पूजा, पूजा करनी है तो ब्राह्मणों की करो, जो हमारे को शास्त्र सिखाते हैं, हमारे घर में पुरोहित बनते हैं। पूजा करनी है तो इस गोवर्धन की करो जो हमारे गायों को घास खिलाता है, जो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, हरिदास वर्य गोपियां गाती हैं वेणु गीत में कि ये गोवर्धन भगवान का ऐसा दास है, गायों को बड़ा हरा हरा घास देता है, ग्वालों को ठंडा पानी के झरने हैं बहुत अच्छे, कहीं कहीं मधु चूती रहती है और कहीं फल है कहीं कंदराएं हैं, गर्मी में ठंडी होती है और ठंडी के मौसम में गर्म होती है, हमारा गोवर्धन ही सब कुछ है, पूजा इसकी होगी। अब बोला नहीं नहीं बेटा ये सामान इंद्र की पूजा का, दूसरे सामान से कर ले। नहीं नहीं इसी से इंद्र की नहीं होगी, अब गोवर्धन की होगी। और भगवान श्री कृष्ण के तर्क को 7 साल के बच्चे ने जो सत्य कहा सारे ब्रजवासियों ने मान लिया, सारे बनाए हुए पकवान गोवर्धन में लाए और गोवर्धन की पूजा की, तो भगवान गोवर्धन बन के ऊपर खड़े हो गए और जो सामान लाए थे वो सब खाने लगे और एक भगवान सब ग्वालों के बीच में खड़े होकर कह रहे थे, देखो कभी इंद्र आया तुम्हारा खाया, देखो हमारा गोवर्धन प्रत्यक्ष भगवान कैसे खा खा रहा है दोनों हाथों से। तो गौ मधु मंगल ने कहा सब खा जाएगा, हम क्या खाएंगे, ये तो लंबे हाथ करके जहां से आए वहां से ले रहा है और पेट नहीं भर रहा है, बोला आनियो और लाओ और लाओ और लाओ। तब गोवर्धन ने फिर वापस प्रसाद लौटा दिया और सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए। गोवर्धन की परिक्रमा बड़े बुजुर्गों ने बैलगाड़ियों में की, नौजवानों ने पैदल की और वापस घर गए। और दूसरे दिन इंद्र ने कहा मेरी पूजा बंद कर दी, और बच्चे के कहने के ऊपर जो तूफानी हवाएं और जो जो प्रलयकालीन बादल हैं उनको कहा जाओ ब्रज को डुबा दो, ब्रज को डुबा दो। अब तो आंधी तूफान जैसा माहौल हुआ, सबने कहा कृष्ण देखो इंद्र का पूजा नहीं किया, इंद्र बहुत कूप करके ऊपर आ रहा है, आंधी तूफान से ब्रज को डुबा देगा। कृष्ण कहते चिंता मत करो, आप सब जिसकी पूजा की है उसकी शरण में आ जाओ, गोवर्धन के नीचे खड़े हो जाओ। सब ब्रजवासी अपनी गायों को लेके सब ब्रज अंगनाए सारे गोवर्धन के 21 किलोमीटर के नीचे आए और भगवान ने गोवर्धन को ऐसे उठा के ऊपर जैसे छोटा सा मशरूम वाला छाता बचाव उखाड़ लेता है ऐसे उठा के अपने उल्टे हाथ के ऊपर रखा, सीधा हाथ कमर के ऊपर रखा और सब उसके नीचे खड़े हो गए। अब ऊपर से वर्षा हो रही है, तूफान चल रहा है, लेकिन पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रही है, पानी कहाँ चला गया सारा। बोला सुदर्शन चक्र घूम घूम के सारे पानी को सुखा दिया और अगस्त ऋषि ने सारा पानी पी के खत्म कर दिया। उसको उसको ये कहा हुआ था कि तेरी प्यास उस दिन बुझेगी जिस दिन भगवान गोवर्धन धारण करेगा, तब जितना पीना है उतना पी लेना, पानी नीचे गिरा नहीं। और सबने कहा कन्हैया तुम तो थक जाओगी, कितनी देर हो गई, अब थोड़ा सा तुम तनिक रुक जाओ, हम थोड़ा सा सहारा दे करें। बोले ठीक है तुम अपने डंडे लगा के रखो, थोड़ा सहारा तुम्हारा भी चल जाएगा। वो डंडे लगा दिए, बोला ये हाथ थक गया है तो दूसरा लगा दो। कन्हैया ये थोड़ा हाथ को ऐसे किया तो पूरा भार पर्वत हिलने लगा। तो फिर सबने लकड़ी अपनी लगा दी। असल में भगवान ने कहा देखो इंद्र हाथ में रहता है ना, तो ले इंद्र ये पहाड़ तेरे सर के ऊपर धारता हूं, तेरे सर के ऊपर पहाड़ पड़ा है, तुम भूखते हो, क्योंकि इंद्र देवता हाथ का है तो हाथ के ऊपर भगवान ने रख दिया। लेकिन असल में सामने गोपियां और राधा रानी खड़ी थी और राधा रानी के ऊपर उसकी नजर भगवान से नजर मिली हुई थी तो पहाड़ शक्ति से खड़ा था, और थोड़ी नजर वहां से हटे तो पहाड़ नीचे आ जाए। अब 7 दिन हो गए तो भगवान ने पहाड़ को नीचे रख दिया। अब कभी कभी भगवान कहता था अरे मैं आपकी रक्षा की थी, एक बार पर्वत उठाया था तो ग्वाल बाल कहते थे आपने उठा के लेने कहाँ उठाया था, हमारे भी डंडे अंदर लगाए थे ना, सारा हमारा था कि नहीं था। तो ये भगवान कहते हैं काम सारा भगवान करता है, लेकिन हमको भी अपने डंडे लगाने चाहिए, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे जप करना चाहिए। और गोपियां कहती थी क्यों तुमने कैसे उठाया, हमारे घर का माखन खाया तब तुम्हारे अंदर शक्ति आई तब तुमने उठाया, माल हमारा खाया उठाया तुम्हारा नाम कैसे होगा। और बहुत अंतरंग गोपियां कहती थी सीधे हाथ से उठाते ना तो हम मानते तुमने उठाया, तो उल्टे हाथ से उठाया जो राधा रानी का है तो उसके सर के ऊपर धर दिया, वो सामने खड़ी थी इसलिए तुम्हारा पहाड़ टिका हुआ था, वो नहीं होती तो तेरा पहाड़ नीचे से हो जाता, ये तो उसकी कृपा से पहाड़ तुमने धारण कर लिया था। और इंद्र को तो लज्जा आने लगी, लेकिन दूसरे दिन सारे ग्वाल बाल आके बैठ गए नंद बाबा के बाद, ये तेरा 7 साल का छोकरा पहाड़ उठा लिया, कौन सा देवता है, आपने हमको क्यों नहीं बताया। पूरी पंचायत बैठ गई, सबको दूध पिला के लस्सी पिला के नंद बाबा कहता है और मैं कुछ नहीं जानता हूं, इतना मुझे पता है कि गर्ग ऋषि ने जब नाम रखा था तब मुझे कहा था ये नारायण के समान है, ये ब्रज को सब आपतों से बचाएगा और ब्रजवासियों का हितेशी होगा। बोला हाँ ऐसे कहा था, नारायण के बराबर है। अच्छा हमारा अपना कन्हैया है, यहां करके ये चले गए और सुबह गैया चराने गए इंद्र के, अरे वो बादल कहते कुछ भी नहीं हुआ। अब इंद्र को लज्जा आने लगी कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया, भगवान को एक किसी लोगों को जब पूजा लेने की आदत पड़ती है ना, तो एक दिन पूजा नहीं मिलती है तो बहुत तकलीफ होती है। ये बहुत खराब बात है। एक आदमी मानो के 10 साल तक कुछ दान दे रहा है, 11वें साल नहीं दे पाया, तो एक ये भाषा है कि अरे अब बड़ा हो गया, अब इसको इसका दिमाग खराब हो गया, अब पेट भर गया, एक तो ऐसा कहता है कोई, और कोई भला मानस होगा कहेगा अरे जाके पूछ के आऊं, 10 साल सेवा कर रहा था, कोई बेचारे को कष्ट तो नहीं आया है, हमारी सहायता की जरूरत तो नहीं है कोई, तो जाके उसका अच्छा आदमी होगा तो उसका भला सोचेगा कि 10 दान इस साल नहीं दिया तो देखूं तो सही क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आदत पड़ जाती है ना पूजा लेने की, नहीं मिलती है तो बहुत परेशानी होती, इसलिए पूजा की आदत में भी अटकना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत कष्ट होता। और इंद्र ने कहा मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे लज्जा आती है, सुरभि गाय को बुलाया। ये गोवर्धन तो ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे अवतार लेना है, मैं जा रहा हूं, राधा रानी तुम भी साथ चलो, तो राधा रानी ने कहा जहां गोवर्धन और जहां जमुना नहीं है वहां मेरे को आनंद नहीं आएगा। भगवान ने कहा गोवर्धन को पहले भेज दिया है, वो ये सामल द्वीप में गोवर्धन द्रोण पर्वत के बेटे के रूप में प्रकट हुआ, और पुलस्त ऋषि वहां से उठा के बनारस ले जा रहे थे, और गोवर्धन ने कहा मेरे को रख दिया तो मैं साथ नहीं चलूंगा, और यहाँ आज गोवर्धन है, यहाँ आके जैसे रखा और पुलस्त ऋषि लघु शंका से वापस आए, उठे नहीं, और वो बिना बनारस के लिए ले जा रहे थे, लेकिन यही रुक गए। पुलस्त ने कहा नहीं जाते हो तो एक राई जितना रोज जमीन में जाते रहोगे। गोवर्धन पहले बहुत बड़ा था, अब छोटा होता जा रहा है देखते देखते। और ऐसे भी कथा आ रही है कि गोवर्धन को हनुमान जी लेके जा रहे थे राम की सेतु के समय, लेकिन जहां अभी गोवर्धन है यहां पहुंचे तो कहा कि सेतु तैयार हो गई, तो इसको यहां रखा। उसने बोला मेरे को भगवान की सेवा, बोला भगवान की वहां चरण देंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन द्वापुर में भगवान तेरे को अपने कर कमल के ऊपर धारण करेंगे, ये वरदान दिया था। तो ऐसे गोवर्धन को गिरिराज कहते हैं, वैसे गिरिराज तो हिमालय को कहना चाहिए, बड़ा तो वो है पर्वत, क्योंकि ये पर्वत इस धरती का नहीं, ये भगवान का बहुत प्रिय भक्त है गिरिराज। ये गोलोक धाम से धरती के ऊपर भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आया है। अब इंद्र सुरभि गाय को पहले भोजा, और भगवान श्री कृष्ण को सुरभि गाय ने प्रार्थना की कि आप हमारे गोविंद हो, हमारे गोविंद आप हो, गायों के इंद्र आप हो, आपको गोविंद के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आप इंद्र को क्षमा कर दें। फिर इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत को लाके सुरभि गाय की दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, देवताओं के सारी सामग्री से पूजा किया, और क्षमा याचना इंद्र ने मांगी। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं जाओ। तो कभी एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो उससे बात भी नहीं की, और इंद्र ने इतना बड़ा उधम मचाया फिर भी भगवान ने कहा कोई बात नहीं क्यों? तो उसका उत्तर ये देते हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान को भगवान के भक्तों से अलग किया। जो भक्तों को भगवान से अलग करता है वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गोवर्धन की पूजा में इंद्र ने 7 दिन तक सारे ग्वाल बालों को गोपियों को भगवान के सन्मुख खड़ा कर दिया, रात को भी कोई घर नहीं गया। तो ऐसा सौभाग्य सबको इंद्र ने प्रदान कराया कि 7 दिन तक सब भगवान का दर्शन कर रहे थे, सब भगवान के लिए एक मिनट के लिए भी भगवान से दूर नहीं हुए, इसलिए भगवान इंद्र के ऊपर बहुत प्रसन्न थे। अब थोड़ी देर के बाद ग्वाल बाल जाके देखें को दिव्य सारी सामग्री से भगवान की पूजा हुई है, तब तो देर हो गई थी, सब ढूंढते हुए कृष्ण को आए, ग्वाल बाल देर क्यों हो गई? तो कहते पता नहीं कौन ऊपर से आया था ऐसे मुकुट वाला, हमारे कन्हैया की पूजा कर रहा था, वो गाया लाया था दूध, तो उन्होंने देखा था सामग्री सारी पड़ी है, सबको आश्चर्य लगा। और यहां भगवान ने इंद्र देवता को भी अब अनुकूल बना दिया, पहले ब्राह्मणों को अनुकूल बना दिया, अब आगे नंद बाबा, अब एकादशी आ गई, उमावस के दिन दीपावली होती है, उसके दूसरे दिन गिरिराज की पूजा होती है, 7 दिन गिरिराज को भगवान ने धारण किया, 1 दिन सारे भाइयों का जो है वो सम्मेलन हुआ कि ये कौन है, तो यहां तक 11 सा गई, ग्यारस के दिन में नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी सुबह सवेरे 3:30 बजे स्नान करने के लिए जमुना में गया और यक्षों ने वरुण के अनुचरों ने वहां से पकड़ के ले गए। वापस नंद बाबा आया नहीं, नंद बाबा कहाँ चला गया, नहाने गया था। भगवान श्री कृष्ण जमुना में कूद पड़े, वरुण लोक में गए, वरुण ने देखा जैसे श्री कृष्ण को, बिठा के पूजा की और पूजा करके मालाएं पहनाई और नंद बाबा देख रहा है, अरे ये तो हमारे कन्हैया को सब लोग जानते हैं, बड़ी पूजा कर रहे हैं, कृष्ण को तो आभूषण दिया वरुण देव ने बहुत सुसर, और कृष्ण के पिता नंद बाबा को बहुत सजा भजा के बाहर। अब ये दोनों जमुना से बाहर निकले तो ग्वाल बालू ने कृष्ण को कहा, क्यों जी ये सब सज धज के आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? तो नंद बाबा ने बोला, ये हमारा कन्हैया को बड़े बड़े देवता जानते हैं, बड़ी पूजा कर रहे थे इसकी, देखो मैं इसका पिता हूं, मेरे को भी नए नए कपड़े और देखो कितने आभूषण दिए हैं। अब सारे ग्वाल बाल कन्हैया को घेर के क्या, क्यों नहीं अपने पिता को सब दिलाया, हमको नहीं दिखाएगा, उसको ले जाता है सब कुछ दिखाता है, हमको भी दिखाओ। भगवान ने कहा, भज में हम आप सबको दिखाते हैं, चलो सबको भगवान वहां से गरुड़ गोविंद जहां का मंदिर है, छत्तीसगढ़ जब जाते हैं लेफ्ट में अंदर जाएंगे तो एक गरुड़ गोविंद का मंदिर है, जहां भगवान गोविंद गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और गरुड़ को कहा इन सबको वैकुंठ का दर्शन करा के आओ। और अन्य किसी लीला में किसी और युग में जहां आज अक्रूर घाट है वहां सब ले जाकर भगवान का देखो ऊपर वैकुंठ, और सब देखते हैं कृष्ण विष्णु के रूप में बैठे हुए हैं, शंकर जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, हाई ग्रीवा खड़े हैं, नारद जी पहुंचने वाले, सब कहते देखो हमारे कन्हैया की सब पूजा कर रहे हैं। तब एक ग्वाल बाल कहते, अरे मेरे को जाना है कन्हैया से बात करनी है, नहीं जा सकते हो आगे, यहां बुलाएंगे तब जाओगे। हाँ गैया कहाँ है, गैया यहां नहीं होती है, अरे मैया कहाँ है यशोदा, यहां मैया नहीं है। कन्हैया तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, बंद करो इस वैकुंठ को, न गैया है न मैया है न गैया कन्हैया के साथ खेल सकते हैं, नहीं चाहिए तेरा वैकुंठ। अब सारे ग्वाल बालों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया, अब ब्राह्मण अनुकूल हो गए, देवता अनुकूल हो गए, सारे बूढ़े गोप अनुकूल हो गए, सबको भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। तब रासलीला का प्रसंग आता है और गोपियों ने पहले तो भगवान के बांसुरी की बहुत सुंदर महिमा गाई है, 5 गीत हैं गोपियों के भागवत में, वेणु गीत है फिर गोपी, यहाँ रासलीला में प्रणय गीत है पहला अध्याय और फिर गोपी गीत है और फिर युगल गीत है और जब उद्धव जाते हैं उसको भ्रमर गीत कहते हैं। 5 गोपियों ने बहुत सुंदर कृष्ण की महिमा और प्रेम के गीत गाए हैं, तो 5 अध्याय जो रासलीला के हैं वो भागवत का प्राण है, जैसे हृदय बीच में होता है ऐसे भागवत के बीच में 5 अध्याय रखे हुए हैं। अब शरद पूर्णिमा की रात आई है, चंद्रमा चमकने लगा है, उस वक्त भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई है और भगवान की बांसुरी आजकल के मोबाइल का पुराना असली नमूना है, जिसका नाम लेके बांसुरी में बुलाते थे उसी की दिल की घंटी बजती थी, जिस गोपी का नाम लेते थे वही गोपी आती थी और जिस गाय का नाम लेते थे वही गाय आती थी, वो पशु भी भगवान की बांसुरी की ध्वनि में अपने नाम को पहचानते थे। ये भगवान ने बांसुरी बजाई और जो गोपी जहां घर में जो काम कर रही थी उस काम को उधर ही छोड़ दिया, कोई आंख में काजल लगा रही थी एक आंख में लगाया दूसरी में लगाना भूल गई और लिपस्टिक पड़ी थी एक आंख में लिपस्टिक और एक में काजल, जो होंठ वाला आंख में चला गया पता नहीं लगा, और हाथ का कंगन डालना था वो डाल दिया पांव में और पायल हाथ में लगा दिए, और जैसी थी वैसी जो काम कर, कोई आटा गूंद रही तो आटे वाले हाथ में चली गई और कोई गोबर लेप रही तो गोबर हाथ में, जैसी थी जैसे भाग के वहां पहुंच गई जहां कन्हैया शरद ऋतु का चंद्रमा की शीतलता में बांसुरी बजाया है, बंसी बट के पेड़ के नीचे यमुना के दूसरे तट पे। अब सारी गोपियां वहां पहुंची तो कृष्ण के क्यों चंद्रमा का सुंदरता शीतल रात्रि का दर्शन करने आई है, हो गया दर्शन अब जाओ जाओ, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार इंतजार कर रहे हैं, जाओ अपने घर जाओ, देख लिया ना। सब कहती है हमको पहले बुलाया अब बोलता है घर जाओ, ये कोई बात है? नहीं नहीं, धर्म की मर्यादा पालन करो, भगवान क्या कर रहे हैं धर्म का उपदेश दे रहे हैं, कौन से धर्म का, कुल धर्म का, कौन से धर्म का, जाति धर्म का, मर्यादा बता रहे हैं। और गोपियां कौन सी कक्षा की हैं, सर्वधर्मान परित्यजमामेकं शरणं व्रज, गोपियां हैं भगवद गीता के अंतिम श्लोक की कक्षा की, बोला हमने सब धर्म त्याग दिया। बोला क्या कहते हो, क्या कैसे त्याग दिया? बोला हम आपसे कृष्ण एक प्रश्न पूछती हैं, जिस पति पत्नी का पति बाहर गया हो तो उसका पति से प्रेम है, घर में फोटो लगा के रखा है पति का, रोज उस फोटो को देखती है, उसी को पहले भोजन रख के उसको खिला के फिर खाती है, बुरा अच्छा करती है, प्रेम है तो पति से। बोला पति पर्दे से वापस आया, दरवाजे के ऊपर पति खड़ा है और पति दरवाजा खटखटा रहा है, तो उस वक्त पत्नी को जो पति का फोटो है उसको भोजन खिलाना चाहिए या असली पति आया उसका दरवाजा खोलना चाहिए? जो पति आया तो पति को बुलाना चाहिए, फोटो की क्या जरूरत है? बोला यही तो हम आपको कह रहे हैं, आप हो असली पति, आज आप सामने आ गए, अब हमारे को आप फोटो के पास वापस क्यों भेज रहे हो? वो तो घर में फोटो निकाल के हमने रखे थे, वो तो थे संसार का, याद नहीं तो कल छूटना है, आप तो जगत के पति हो, आपको ही हमने प्राणों का स्वामी माना है, आप हमारे प्राण वल्लभ हो, गोपीजन वल्लभ आप हो गोपियों के। और ये जब कहा तो भगवान, इसको गोपियों का प्रणय गीत कहते हैं, और फिर भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए, ये भगवान के वैभव का प्रकाश है, एक जैसे कृष्ण हर गोपी के संग। थोड़ी देर के बाद राधा रानी को अच्छा नहीं लगा कि सबके साथ कृष्ण क्यों, कृष्ण तो मेरे है, और राधा रानी कृष्ण को लेके वहां से चली गई। और ऐसा भी भाव कभी होता है कि हर गोपी ने देखा कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण से नजर हटी और अपने अपने सौभाग्य की ओर नजर गई तो फिर भी दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी, श्री कृष्ण वहां से गुम हो गए और गोपियां सब आपस में मिलकर ढूंढने के लिए निकली। अरे दो को, एक पुरुष का एक स्त्री का, किसी एक गोपी के साथ गया है, नाम नहीं लिखा है किसके साथ गया है, लेकिन है राधा रानी के साथ गया है। और आगे जाके देखती हैं, अरे यहां तो एक पांव है और बहुत घिसे हुए, इसका मतलब जिसके साथ गए हैं उसको कोई फूल अच्छा लगा है, उसको कंधे के ऊपर चढ़ा के फूल उतारा है। अब राधा रानी, गोपियां सारी राधा रानी के काया का व्यू है, मतलब शरीर का विस्तार है, जो गोपियों के मन में भाव, जो राधा के मन में भाव है वो गोपियों के मन में भाव आ जाता है। आज राधा रानी कहती है सारी गोपियां परेशान होगी, अब मुझे क्या करना चाहिए कि हम उन गोपियों को से मिल लें? तो राधा रानी ने कहा मेरे से चला नहीं जाता है कृष्ण, अब मैं बहुत थक गई हूं। बोला आप थक गई तो अभी और कोई व्यवस्था तो है नहीं पालकी की, या आप मेरे कंधे के ऊपर चढ़ जाओ। कृष्ण नीचे कंधे के बैठा और राधा रानी पांव ऊपर किया, तब तक कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए। अब राधा रानी भी वहां बैठी अकेली कृष्ण की जुदाई में, सब गोपियां आई राधा रानी को देख लिया, अब कोई द्वेष नहीं रहेगा, सभी कृष्ण को ढूंढने लगी, वन वन में ढूंढने लगी, अभिन्न करने लगी कृष्ण का। इसको कहते हैं प्रेम में वो इतनी पागल हो गई कि अपने आप को कृष्ण मानने लगी। एक गोपी कहती है क्यों डरती हो, क्यों डरती हो, ये देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया है, अपनी चुनरी को ऐसे करके आओ इसके नीचे खड़े हो जाओ, इंद्र क्या करेगा? गोपियां कृष्ण का भाव को प्रकट कर रहे, इसको बोलते हैं असल में प्रणय। प्रणय का मतलब प्रेम की वो अवस्था जिसमें प्रेमिका और प्रेमी के अंदर कोई भेद न रह जाए। और इसके बाद गोपियों ने कहा ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे मिलेगा? बोला जहां गुम हुआ है वहीं ढूंढेंगे, चलो जमुना जी के तट पे, और बैठ के गोपियों ने गोपी गीत गाया है। और उस गोपी गीत को जैसे गाया है भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, और गोपियों ने अद्भुत ये गीत गाया है। गोपी कृष्ण के जाने के बाद वापस अपने घरों में नहीं गई, गोपियां कृष्ण को कहती हैं अरे इस वन में तुम रात को कहीं पांव में कांटा न लग जाए, तुम्हारा पांव कितना कोमल है, हम तुम्हारे पांव को हाथ लगाती हैं तो हमारे हाथ की करकश तुम्हारे पांव को लगती है तो कांटा लगेगा तो क्या होगा, हम तो घर परिवार सब छोड़ के आपके पीछे आए, आप हमको छोड़ के क्यों चले गए? अगर छोड़ के जाना था तो हमारे को कालिए के विष से क्यों बचा दिया, हमारे को दावागन अग्नि से बचाया ही क्यों था? बहुत अच्छा गोपी गीत में जो भाव है वो तो एक कथा 15 दिन महीना उसी एक गोपी गीत की कथा करते हैं लोग, उसमें जो रस है लेकिन हम उसके स्तर के है नहीं जो उसको समझ पाए। कृष्ण फिर प्रकट हो गया, अब गोपियों को जो रो रो के चुनरियों के अंदर आंसू थे और जो लार थी वो सारी चुनरियां बिछा के उसके ऊपर आसन बना के दे दिया जमुना जी के तट पे। भगवान के लिए कहां सोने का सिंहासन रतन का, और गोपियों की चुनरी के ऊपर बैठे और चारों ओपी गोपियां घेर के हाथ पांव से पकड़ के बैठी कहीं चला ना जाए। और गोपियां वार्तालाप करती हैं कि हम आपसे ये पूछती हैं, जो प्रेम करने से वाले से प्रेम करता है, एक होता है जो प्रेम करो उससे प्रेम करता है, दूसरा होता है आप प्रेम न करो तो भी आपसे प्रेम करता है, और तीसरा होता है आप प्रेम करो उसको पता ही नहीं लगता है, और चौथा होता है जो आप प्रेम करो वो तो कभी आपसे प्रेम करेगा ही नहीं। आप बताओ ये कौन होते हैं कृष्ण? कृष्ण कहता है जो आप प्रेम करो आपसे प्रेम करता है, ये दुनियादारी है, व्यापार है, दोस्त है, तुम जाओगे वो आएगा। बोला आप प्रेम नहीं करो फिर भी करेगा? बोला ये माता पिता है, बच्चे नहीं भी करें तो माता पिता तो उनसे प्रेम करेंगे। बोला फिर वो कौन है जो प्रेम करने के बाद भी नहीं करते हैं? बोला तीन हो सकते हैं, या तो पागल है उसको पता नहीं है कि सामने वाला मुझसे प्रेम कर रहा है, वो पागल होगा, या तो कोई समाधि में है उसको पता ही नहीं है कि कौन मुझसे प्रेम कर रहा है, और नहीं तो कोई बहुत बड़ा एक शब्द बोल दिया कि बहुत बड़ा क्या हिंदी का शब्द है उसको कहते हैं, जो किसी के भले किए हुए को स्वीकार न करे उसको क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कृतघ्न है। रामायण में तो लिखा है, रामचंद्र कहते हैं कृतघ्न का कोई उपचार है ही नहीं। सुग्रीव को बोलना हमने तुमसे भला किया और तुम कृतघ्न बनते हो, कृतघ्न के लिए कोई रास्ता संसार में छोड़ा नहीं है। तो गोपियां को कहते कृष्ण कहता है वो कृतघ्न है। अब गोपियां हंसती हुई एक दूसरे को देखती हैं, देखो हम इससे प्रेम करती हैं और ये प्रेम वापस करता नहीं है, पागल तो ये है नहीं, समाधि में भी नहीं है, तो ये बड़ा कृतघ्न है, ये बड़ा कृतघ्न है। और भगवान श्री कृष्ण कान पकड़ के कहता है गोपियों मैं आपका ऋण चुका ही नहीं सकता हूं, ब्रह्मा जी के एक दिन तक भी आपका मैं ऋण चुकाऊं जो आपने मेरे लिए किया है मैं कर ही नहीं सकता हूं। असल में मैं आपके बीच से इसलिए अलोप हो गया, गुम हो गया कि आपके प्रेम को अंतरंग करना है, क्योंकि अब भगवान को ब्रज छोड़ के 100 साल जाना है और गोपियों के प्रेम को बाहर वाले प्रेम को अंतरंग करना है, इसलिए मैंने आपके प्रेम को पक्का करने के लिए ये लीला की। मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता, चुका नहीं सकता, चुका नहीं सकता। गोपियां इस प्रसंग को कहते हुए आश्चर्य हमको आनंद आता है कि गोपियों का ऋण चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और गोपियों की तरह उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और गली गली में कृष्ण का नाम गा के वो गोपियों का ऋण उतार। हम कहते हैं अच्छा किया रास लीला में भगवान ने कहा गोपियों को ऋण नहीं उतार पाता हूं, भगवान ने कहा अब गोपियों का ऋण उतारना है। तब 522-23 साल पहले इस धरती के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उन्होंने राधा के भाव में गली गली में भगवान श्री कृष्ण के नाम को गाया है। ये चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य का रास लीला भूमिका है और यहां फिर दोबारा रास हुई जो ब्रह्मा जी के एक दिन जितनी रास हुई। और रास लीला के बाद अब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जाना है, उसको जाने से पहले 3 असुरों का संहार करेंगे, और भी नाम बहुत है लेकिन 3 मुख्य असुर है। एक का नाम है व्यमासुर, एक का नाम है हाईग्रीवा और एक का नाम है भूमासुर, सॉरी वयमासुर, अघासुर और वृषभासुर। भगवान के रास विहार करते हुए बैल के रूप में राक्षस आया, वो हुआ वृषभ असुर। भगवान ने उसको पटक के मार दिया और गोपियों ने कहा कि आपने बैल को मारा है, अब जाओ तीर्थों में स्नान करके आओ। और भगवान ने श्याम कुंड अपनी वेणों से खोदा, सब तीर्थों का आह्वान किया और फिर राधा रानी ने अपना राधा कुंड बनाया। ये श्याम कुंड और राधा कुंड वृषभ उधार के बाद बने हैं। तो भगवान ने वृषभ का उधार क्यों किया? तो गोपियों का ये बैल है, तो भगवान ने बैल, हमने आपको पहले दिन बताया था कि बैल धर्म का प्रतीक है लेकिन आज असुर बन के आया था, तो भगवान का वृषभासुर का उधार करके ब्रज के प्रेमी भक्तों को कोई धर्म के नाम में विचलित न कर सके इसलिए वृषभासुर का वध किया। और एक घोड़े के रूप में आया हिनहिनाता हुआ केशी, जहां केशी घाट है, भगवान ने हाथ उसके गले में दबा दिया, उसके प्राण निकाल दिए। ये घोड़े की शक्ल का राक्षस एक वेद को चुरा के गया था हाईग्रीवा। तो भगवान ने केशी को मार के ये सिद्धांत स्थापित किया कि भविष्य में कोई वेद के नाम में मेरे प्रेमी भक्तों को विचलित न कर सके। अरे वेद ऐसे कहता है, तेरा वेद तेरे पास, हम कृष्ण के प्रेम करने वाले, हमारे को तुम्हारा वेद नहीं रोक सकता। और तीसरा, वयमासुर कृष्ण ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं और एक पक्ष में ये वयमासुर हो गया और ग्वाल बालों को ले जाके गुफा में छुपा के आ जाए। ग्वाल बाल कम होने लगे, आस्ते आस्ते ग्वाल बाल कम हो रहे थे, तो भगवान ने वयमासुर को मार दिया। बोला वयमासुर क्या है? बोला योग, जो सबको ऐसे आंखें बंद करके दिखा देता है। योग के नाम में कोई भक्तों को विचलित न करे, धर्म के नाम में विचलित न करे और वेद के नाम में विचलित न करे। भगवान की प्रेम भक्ति योग से, वेद ज्ञान से और धर्म के कर्म के नियमों से बहुत ऊपर है। ब्रजवासी इन सब नियमों से बहुत ऊपर है। और इसके बाद नारद ने जाके कंस को बोल दिया कि आप जो महाराज भोजराज के पुत्र कंस वसुदेव के जिस बेटों के मारने का इतना योजना में असफल हुए हो ना, मैं बताऊं नंद के घर में जो कृष्ण बलराम है वही वसुदेव के बेटे हैं। ये कह के नारद जी वहां से चले आए वृंदावन और कन्हैया गैया चरा रहा था, जाके कन्हैया को बोलो हे गोपाल मैं कंस को ये बता के आया हूं, आपने ब्रजवासियों को बहुत आनंद दिया, अब मथुरा में आपके माता पिता कारागर में है, महाराज उग्रसेन को कंस ने कैद कर दिया है, मैं आज के दो दिन के बाद कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, अब आप मथुरा कृपा करके आइए। यहां भगवान को आके नारद ने कह दिया और वहां कंस को समाचार दे के आ गए। इस बीच में कंस ने क्या किया? बोला एक बहुत रंगमंच बनाते हैं, धनुष रखते हैं, सबको निमंत्रण भेजते हैं, अरे अक्रूर जाओ नंद बाबा के मान दो बच्चे है ना कृष्ण बलराम, उसको यहां बुला के आओ और ब्रजवासियों को भी निमंत्रण दे के आओ। अक्रूर यदुवंशी है, कृष्ण के दर्शन के लिए अभी रुका हुआ है, बाकी सब बेचारे यदुवंशी कंस के अत्याचार से अन्य प्रांतों में चले गए हैं लेकिन ये रुका हुआ है। अक्रूर कहता है ये क्रूर कंस है, छोटे बालकों को मारेगा, लेकिन अब कह रहा है तो नया रथ देना पड़ेगा, हाँ नया रथ लेके जाओ। कहा मैं जो अक्रूर रथ के ऊपर चढ़ा है मनोरथ कर रहा है कि कृष्ण बलराम मुझे काका कहेंगे, मेरे को प्रणाम करेंगे, मुझे गले मिलेंगे, और रथ के तो हाथ नहीं लगाया, शाम तक नंद गांव में पहुंचा है, रथ को देख के अक्रूर का कृष्ण बलराम ने देखा है, रास्ते में कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह देख के अक्रूर रथ से कूद के और लोट लोट के आनंद ले रहा है और भगवान की वंदना करता हुआ जा रहा है। अक्रूर वंदना भक्ति का आचार्य है। कृष्ण बलराम ने कहा और जैसे मनोरथ किया था, बोला काका आ जाइए, और उन दोनों को पकड़ के एक हाथ कृष्ण ने सीधे हाथ को पकड़ा, उल्टे हाथ को बलराम जी ने पकड़ा, सीधा घर ले गए। नंद बाबा ने स्वागत किया, एक गाय लाके दिखाई कि इस गाय का दूध दही आपके लिए। पुराने जमाने में घर कोई मेहमान आता था ना तो उसको गाय एक दिखाई जाती थी लाके कि इसका दूध दही आपके लिए होगा। अभी तो गाय कहां से लाके दिखाएं, कुत्ता दिखाते हैं कि तुम्हारे को ही काटेगा बगैर टाइम बाहर निकले तो काटेगा बिल्ली भी नहीं, बिल्ली होगा कुत्ता होगा, गाय तो नहीं होगी घर में, दिखाएंगे क्या बेचारे। आज भी जो गुरुवायूर मंदिर है रोज सुबह, और जो श्री रंग मंदिर है रोज गाय का दर्शन भगवान को कराते हैं, ये रोज का नियम है कि इस गाय का दूध दही भगवान आपकी सेवा में अर्पण होगा। सो अक्रूर का तो फिर भोजन कराया, विश्राम कराया। अक्रूर ने कहा ऐसे कंस ने निमंत्रण देके भेजा है, कल आप सब लोग मथुरा चलिएगा। रात को सबने कहा ये कौन आया है रथ लेके, क्यों आया है, लेकिन सुबह सवेले कृष्ण और बलराम को रथ के ऊपर चढ़ के मथुरा जाने हुए देखा तो यशोदा तो मूर्छित होके गिर पड़ी। आज तक कभी सुबह जाते थे गैया चराने, दो चार घंटे वो बैठ के गीत गाया करती थी, उसको कहते हैं युगल गीत। जब उभपियां कहती थी कृष्ण वन में अब ये करता होगा, अभी यहां होगा, सारा दिन उसका चिंतन। आज मथुरा जा रहे, रात को वहां रहेंगे, आज तक रात एक भी कृष्ण को नहीं देखा, ऐसा दिन था नहीं। तो यशोदा तो बहुत मूर्छित हो गई। नंद बाबा बैलगाड़ियों में गोपों को लेकर और मथुरा के लिए निकले और अक्रूर के रथ के ऊपर कृष्ण बलराम चढ़े, गोपियां रथ के आगे आके खड़ी हो गई। अक्रूर गमन मार्ग, नंदगांव से बरसाना रास्ता जाता है, एक नंदगांव के सामने से रास्ता जाता है, उसका नाम है अक्रूर गमन मार्ग। अक्रूर जिस रास्ते से ले गया था वो रास्ता खदीर वन से होके जाता है, वो दूसरे रास्ते से मथुरा आता है। एक तो गोवर्धन से घूम के जाता है बरसाना से होके, एक दूसरा रास्ता है। तो गोपियां रास्ते में गिरी, भगवान ने कहा मैं परसों आ जाएगा, जहां कहा परसों आएगा उस गांव का नाम परसुआ हो गया। ग्वालों ने कहा कब आओगे, बोला 13 दिन में आ जाऊंगा, 10 तो 13वां हो गया गांव का नाम, अब लौट के आऊंगा, वो लोठा बाबा उधर बैठा है, लौट के आऊंगा। तो ये सब रास्ते में मिले भक्त, और अक्रूर को दिल में आया कि मैं कृष्ण बलराम को कहां ले जा रहा हूं, मुझे इनको नहीं ले जाना चाहिए, ऐसे कंस मरवा देगा। भगवान श्री कृष्ण देखा कि काका अक्रूर को डर लग रहा है, तो कहा काका जमुना जी के किनारे रुक जाओ, उसको अक्रूर घाट कहते हैं, आप स्नान कर लो। अक्रूर जैसे स्नान करने के लिए जमुना के अंदर डुबकी लगाई है, तो अंदर देखते हैं कि चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और अनंत शेष के रूप में बलराम जी खड़े हैं। फिर बाहर निकल के देखते हैं कि दोनों रथ के ऊपर बैठे हैं, फिर डुबकी लगाते हैं। 3-4 बार ऐसे आश्चर्य हुआ। बाहर आए तो भगवान ने कहा कुछ आश्चर्य काका, बोला आपका दर्शन करके अब कोई आश्चर्य नहीं रहेगा, और ये मानना है कि जो नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण और दाऊ जी है वो तो वृंदावन में रह गए, और यशो वसुदेव कृष्ण के भाव से अब अवतार वाला कृष्ण और बलराम जी मथुरा के लिए प्रस्थान किया, ये सीमा है। कृष्ण अदृश्य रूप से आज भी ब्रज में लीला कर रहा है, उसको अप्रकट लीला कहते हैं, वो वास्तविक लीला है जो नित्य होती है। अवतार काल में जो लीला होती है उसको व्यवहारिक लीला कहते हैं, वो इस भागवत में लिखी हुई है। लेकिन इस लीला के अलावा इतनी अनंत लीलाएं हैं जो केवल तपस्या से शुद्ध हृदय में, संतों के हृदय में टेलीविजन की तरह दिखने में आती है, उन लीलाओं का वर्णन आपको भागवत में नहीं मिलेगा। वो तो रसिक संतों के हृदय से उन लीलाओं का प्रकट होता है, उसको कहते हैं अप्रकट वास्तविक लीला जो नित्य है, और अवतार काल की लीला को कहते हैं व्यवहारिक लीला। लेकिन व्यवहारिक लीला सुनने से उस लीला में प्रवेश मिलता है। तो यहां से अक्रूर जब मथुरा पहुंचा है तो कृष्ण बलराम ने कहा जहां हमारे बाबा रुके हैं ना नंद बाबा, वहीं जाके हम रुकेंगे, और एक बड़े बगीचे में नंद बाबा की गाड़ियों। अक्रूर ने कहा हमारे घर चलिए बेटा, बोला काका बाद में आएंगे। रात को दूध पिया अपनी गाय का, नंद बाबा के साथ कृष्ण बलराम सो गए सब ग्वाल बालों के संग। दूसरे दिन सुबह उठे 10-11 बजे, बच्चे तैयार होके, बोला जरा मथुरा का निरीक्षण करते हैं, मथुरा का दर्शन करने चलते हैं। अब भगवान का उद्देश्य था थोड़ा सा आतंक फैलाना चाहिए, मामा की नगरी में आतंक फैलाना है। आतंक कहां से शुरू करना है, देखा तो सामने से एक धोबी उस कंस के कपड़े धुले हुए नए ले जा रहा था। बोला सुन भाई सुन, देखो हम ग्वाल बाल सीधे आए हैं, गैया चराते हुए हमारे गोबर लगा हुआ है, अरे आज बड़े शहर मामा के शहर में आए हैं, मथुरा नगर है बहुत, कपड़े ये हमको पहना दो। उसने बोला कंस का धोबी हूं, आप क्या समझते हो कपड़े कंस के आपको मिलेंगे, हट जाओ रास्ते से। भगवान ने उसकी तरफ देखा नहीं, ये हाथ उल्टा ऐसे करके सीधा क्लियर कट मारा, उसका गर्दन दूर जाके गिरा, हाहाकार मच गई, छाए धोबी थर थर कांपने लगे, ये कौन है, हाथ से तलवार की तरह गर्दन गिरा दिया, और सारे धोबी जो है घर से बाहर ना निकले, पूरा आतंक फैल गया। और भगवान ने बोला कपड़े जिसको जो चाहिए उठाओ, उठा के कपड़े, बोला ये तो बड़े कपड़े हैं, हम तो सब ग्वाल वाल छोटे हैं 11-12 साल के, ये तो कंस के हैं। बोला चलो इसका अल्टर कराते हैं, एक दर्जी के पास चले गए, 10-12 उसके पास दर्जी काम करने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो इन सब बच्चों को सुंदर कपड़े ये पहना के सुसज्जित कर दो, वो तो सबको काम में लगा दिया। और भगवान श्री कृष्ण सब प्रेम से कपड़े बना के पहनाने का प्रयास कर रहा था, आंखों से आंसू बह रही थी। बोला ये क्या लीला भगवान कर रहे हैं। बोला वो धोबी तो वो था जो राम जी जब सीता कहा कि मैं राम नहीं हूं, जो सीता को घर में रख लिया, अपनी पत्नी को ऐसे कह रहा था जिसके कारण सीता को भगवान ने मर्यादा राजनीति की पुरुषोत्तम पालने के लिए भेज दिया। तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कन्हैया ने कहा अब इससे उधार उतारनी है। उस धोबी का तो गर्दन काट के उसका कल्याण कर दिया। और ये दर्जी वो था जिसने भगवान श्री रामचंद्र की बहुत सुंदर राज तिलक की पोशाक तैयार की थी, लेकिन भगवान वनवास चले गए, उसको मौका नहीं मिला। आज वो भगवान को सुंदर वस्त्र पहना रहे। अब भगवान ने कहा वस्त्र हो गए तो माला तो पहननी चाहिए, माला के बगैर तो बाहर निकलते नहीं थे। पुराने लोगों के घर के अंदर सोने का मुकुट होता था, घर से पगड़ी के ऊपर मुकुट बांध के निकलते थे, कानों में कुंडल होते थे, गले में नौलखे हार पहनते थे, फूलों की माला पहनते थे, आंखों में काजल लगाते थे, ऐसे निकलते थे। उनके घर में सोने के मुकुट होते हुआ करते थे, ऐसा रामायण वर्णन है कि अयोध्या में सबके महल थे और सबको सोने के मुकुट थे। हमारे कहाँ चले गए ये मुकुट, गए कहाँ, कोई पहन के निकलता नहीं। शादी में भी वो कपड़े लद्दे का पत्ते का कपड़े का पता नहीं काहे का मुकुट पहनाते हैं, वो 2 घंटे पहनाते, वो भी नकली, वो भी किसी के पास असली नहीं। चांदी का कम से कम सोने का मुकुट होना चाहिए, पहले सबके पास होता था। हम बहुत विचार करके देखा मुकुट पता नहीं कहाँ चल गया, हेलमेट आ गया, टोपा डाल के सब घूम रहे, मुकुट हेलमेट बन गया है आजकल का, ये तो नया मुकुट का नया फार्मूला आ गया। तो अब सुधामा माली के घर में गए हैं और सुधामा माली कृष्ण बलराम को बड़ा आनंद से बिठाया है, सुंदर मालाएं पहनाई हैं, सब ग्वाल वालों को मालाएं पहनाई है। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में लक्ष्मी का निवास होगा, तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, आशीर्वाद दिया है। अब सारे माली भगवान के पक्ष में हो गए, सारे दर्जी भगवान के पक्ष में हो गए। अब बोला चंदन तो थोड़ा लगना चाहिए ना, तो जा रही थी कुब्जा और कुब्जा चंदन लेके जा रही थी। कृष्ण ने कहा ये सुंदरी, उसने ऐसे देखा आश्चर्य से, आज तक मुझे लोग पीछे से बंदरी बंदरी कहते हैं, इतनी मैं कुबड़ी हूं, ये सुंदरी कौन कह रहा है। उसको बड़ा अच्छा लगा और मधुर आवाज में कृष्ण ने कहा बोला ये अंगराग हमको लगाओगी। कहती है मैं भोजराज को लगाती हूँ, कंस को, मेरे उसको मेरा अंगराग बहुत पसंद है, लेकिन आप जैसा सुंदर अंगराज लगाने को मिल जाए तो आपने हाथों से कृष्ण को बलराम को अंगराज लगाया, भगवान को क्या कह, तत्काल इसको फल देना चाहिए। और उनके पांव के ऊपर पांव रखा, एक हाथ से चुटिया को पकड़ा, एक हाथ पीछे कुबड़ को मारा और सुंदरी बगैर ऑपरेशन के एकदम परफेक्ट होके खड़ी हो गई और कृष्ण का पल्लू पकड़ के खड़ा, हाँ कहाँ जा रहे हो अभी। उसने बोला तुम्हारे पास भी आऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, अब तो काम बहुत है, मामा प्रतीक्षा कर रहा है। अब तो सारे मथुरा में समाचार फैल गया, कोई जरूरत नहीं ब्यूटी पार्लर की, ये कुछ भी नहीं, हाथ से सुंदरी बना देता है, कुबर चली गई एकदम ठीक हो गई, सारे अस्पताल बंद, ब्यूटी पार्लर बंद, बोले इतना बड़ा सुंदर सबको तत्काल सुंदर बनाने वाला है। अरे भगवान तो सुंदर लाला है, उसको देखने से आदमी सुंदर हो जाते हैं। अब यहां से सुंदर बन गए और चले हैं जहां सब सिपाही खड़े हैं, जहां बहुत सुंदर धनुष रखा हुआ है और उसका कल पूजा होनी है। कृष्ण बलराम अंदर गए, धनुष को उठाया, 2 टुकड़े करके फेंका और सिपाही आए सबको मार दिया। मामा को समाचार मिल गया कि कपड़े आए नहीं आज, धोबी वापस ही नहीं आया, कपड़े नहीं आए आज, न अंगराग लगाने वाला आया, न माला आई, और तो और वो सिपाहियों को भी मार दिया। रात को कंस को नींद आई नहीं, कहा चाणूर मुस्टिक थल तोशल और कवलिया पीड़ा हाथी को गेट पे खड़ा करना, अंदर मत आने देना कृष्ण बलराम को, और अंदर आ जाए तो पटक के मार देना, मेरे तक पहुंचने मत देना, और सावधान रहना, हमारी सिक्योरिटी पक्की होनी चाहिए। भगवान वापस गए, नंद बाबा के वहां दूध दही पिया सो के मौज से। दूसरे दिन सब रंगमंच में आके बैठ गए और कृष्ण बलराम प्रवेश करने के लिए आए तो खतरनाक हाथी कवलिया पीड़ खड़ा है और कवलिया पीड़ का महावत कहता है हाथी को इनको मारो। वो कहते हैं हटाओ ना, मामा ने निमंत्रण दिया है, हम भांजे हैं उसके, हमको बुलाया है, काका अक्रूर लेने आया है। बोला काका अक्रूर नहीं, ये मामा का भेजा हुआ कुवलिया पीड़ आपका स्वागत करेगा। अच्छा बलराम जी ये नहीं हटाएगा महावत, अब क्या करना है। बलराम जी ने पूंछ से हाथी को खींचा, भगवान श्री कृष्ण ने धक्का दिया, सूंड से खींचा और हाथी को नीचे पटका, महावत को मारा, हाथी को मारा, दोनों हाथी के दांत निकाले और लहू लाल दांत गंधे के ऊपर एक कृष्ण के एक बलराम जी के रंगमंच में प्रवेश किया। ऊपर से कंस पहुंचता है, वो कौन है? बोला कृष्ण बलराम। बोला कंधे पे क्या है? बोला कोलिया पीड़ के दंत, कोलिया पीड़ मर गया, हे जल्दी करो जल्दी करो। और बहुत बड़े पहलवान चाणूर कहता है कृष्ण को मेरे से कुश्ती करो, मुष्टिक कहता है मेरे से करो। तो ऊपर लोग कहते हैं देखो अन्याय है, कितने छोटे कोमल 11 साल के बच्चे और ये पहलवान देखो कैसे है, ये तो ठीक नहीं है ऐसा। कृष्ण बलराम कहते देखो आप तो बड़े हो रेसलर, बड़े पहलवान हो कुश्ती के, हम बच्चे हैं, तुम बच्चे हो, हम जानते नहीं है। घासुर कहाँ गया, बकासुर कहाँ गया, पूतना कहाँ गई, तृणावर्त कहाँ गया, ये सब मार दिए, हमको मालूम नहीं है। भगवान के तो क्यों आपको कुश्ती करनी है? बोले हाँ जरूर करनी है, चलो आप करते हैं दो दो हाथ। भगवान चाणूर के साथ और बलराम मुष्टिक के साथ दो चक्कर लगाए, फटका नीचे मुष्टिक चाणूर को और मुष्टिक को बलराम ने मारा। कृष्ण ने कहा देखो मामा बहुत परेशान हो रहा है ऊपर मंच के ऊपर, बाकी खल तोशल को आप देख लो बलराम। और कृष्ण कूद के मंच के ऊपर चढ़े और जैसे कृष्ण मंच के ऊपर पहुंचे उठ के कंस खड़ा हो गया तलवार निकाल के, भगवान के स्वागत में खड़ा हो गया और भगवान ने बालों में हाथ डाला और झटका दे के नीचे मंच से गिराया। जैसे कंस नीचे गिरा भगवान उसकी छाती के ऊपर बैठे और हाथ को ऐसे ऊपर किया तो देखा कि मामा का दिल बंद हो गया, मामा मर गया। अरे बोला मैंने नहीं मारा है तो हार्ट फेल हो गया, मामा ऊपर से गिरते ही मामा का प्राण निकल गया, मैं तो अभी मुक्का भी नहीं मारा है, हाथ ऊपर किया है। अब तो दूसरे मामा के चाहे तो कृष्ण बलराम ने मार दिया, अब कंस का उद्धार हो गया, सारे ऊपर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने जाके उग्रसेन को निकाला जेल से, कहा आप हमारे स्वामी हो, आपका राज तिलक हो गया। और फिर जेल के अंदर जाके वसुदेव और देवकी के सामने खड़े हो गए, उन्होंने तो चतुर्भुज रूप में देखा था और सूत की गृह से दोनों को विदा किया था। थोड़ी देर के लिए उनके ऐश्वर्य से ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए, तब कृष्ण ने कहा वो बच्चा जिसको समर्थ भी हो और माता पिता की सेवा न करे वो अच्छा नहीं माना जाता, आप यहाँ जेल में है और हम गोकुल में रहे आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमको क्षमा करना। और उनके हृदय में वात्सल्य का भाव आ गया, ये बच्चों की भाषा बोले, दोनों को गोद में ले लिया है, आंखों से अभिषेक करा लिया और वस देवकी के स्तन में दूध की धारा आ गई। अब श्री कृष्ण बलराम ब्रज में रहने लगे और उग्रसेन महाराज मथुरा का राजा हो गया, मथुरा में रहने लगे। और सारे जो यदुवंशी मधुवंशी भोजवंशी बाहर गए थे वो वापस आए और कृष्ण बलराम का दर्शन करके सारे बूढ़े जवान हो गए, ऐसे भागवत में लिखा है। उनका सब बुढ़ापा भय सब चला गया। अब दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण वापस आए हैं नंद बाबा से मिलने, वो अभी तक बगीचे में रुके हुए। कहते बाबा अब आप वापस वृंदावन चले जाओ क्योंकि अब थोड़े दिन हमारे को यहाँ हमारे इन बंधुओं का हित करने के लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि कंस के मामा के मरने के बाद इसका ससुर जरासंध जो है ना, इनकी दो बेटी अस्थियां और अस्थि और प्राप्ति, ये मामा की दो बेटियां थे पत्नियां हैं, ये जरासंध की बेटियां हैं, वो आक्रमण करेगा। हमारे वृंदावन में तो कोई व्यवस्था है नहीं तो हमको कुछ समय मथुरा रहना पड़ेगा। नंद बाबा के पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि वापस कन्हैया कृष्ण बलराम को नहीं ले जाऊं, लेकिन कृष्ण बलराम कहते हैं बाबा जब आप मेरे घर मुझे याद करोगे मेरे को आपके पास पाओगे, लेकिन अब आप जाओ। नंद बाबा छक अपने बैलगाड़ियां को बांध के और रवाने हुए, लेकिन हृदय बहुत भारी, आंखों में आंसू हैं। और जैसे पहुंचे हैं नंद गांव में, यशोदा मैया कहती कृष्ण बलराम को नहीं लाए, आप कैसे जीवित आ गए, आपके प्राण क्यों नहीं निकले, बगैर कृष्ण बलराम के कैसे आ गए यशो। नंद बाबा कहता है एक ही पिता तो दशरथ था, राम नहीं आया तो प्राण निकल गए, हम क्या झूठ मूठ के पिता है, कृष्ण आया नहीं प्राण अभी तक कैसे पड़े हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन यशोदा मेरे प्राण निकल गए होते, कृष्ण ने जब कहा कि नहीं चलता हूं तो मैं वहीं मर गया होता, मैं मर गया होता तो आप यहां मर जाती, आप मर जाती तो ब्रजवासी मर जाते। और कृष्ण कह गया था कि मैं वापस आऊंगा, वो वापस आएगा, हमको नहीं पाएगा तो उसको दुख होगा। इसलिए हम रोज मरेंगे लेकिन उसके आने का इंतजार करेंगे, उसको दुख हो जाए ये हमको स्वीकार नहीं है। नंद बाबा यहाँ अब से यशोदा मैया के आंखों से आंसू बह रही हैं और रोज शाम को देखती है जब गैया आती है कि कन्हैया कब आएगा, और जब नहीं देखती है आरती लेके खड़ी होती है, बेहोश हो जाती है। थोड़े समय के लिए नंद बाबा तो कुछ गोल ग्वाल वालों से बात करते हैं, लेकिन यशोदा और बाकी सारी गोपियां अपना काम करती हैं, खुश रहती हैं। इसलिए अचानक कृष्ण आ जाए और हमको दुखी देखेगा तो उसको बड़ा दुख होगा। और इस तरफ वसुदेव और ने देवकी के ना कहा, 11 साल के बच्चे हो गए, अभी स्कूल भी नहीं भेजा, इसके पढ़ाने का कोई प्रबंध तो करना चाहिए ना। 64 दिन अवंती का नगरी में भेजा, जहां सांदीपनी मुनि ने उसको सब शिक्षाएं दिला दी और गुरु दक्षिणा में कहा कि मेरा बेटा प्रभास क्षेत्र, वो जहां सोमनाथ है वहां समुद्र में डूब गया था। कृष्ण बलराम समुद्र में गए, एक राक्षस था 5 जने उसको मारा और 5 जने शंख लिया, लेकिन वो नहीं मिला वहां। और संयमपुरी नगरी में चले गए यमराज की, यमराज को कहा गुरुदेव का बेटा, बोला ये बैठा है कर्मों से यहाँ आया है, बोला हम आए अब कर्म खत्म, वापस दो। उस बच्चे को लाके गुरु दक्षिणा में वापस दिया और गुरु से आशीर्वाद लिया। गुरु ने कहा हमारी विद्या सदा आपके संग रहेगी, कभी आपको ये विद्या आप भूलेगी नहीं, आपका यश हो, ऐसे सांदी मणिपुरी ने आशीर्वाद दिया है। और श्री कृष्ण जैसे वापस पढ़ के आए हैं, इतनी देर में जरासंध की पूरी सेना 17 अक्षौणी सेना लेके आ गया मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए। यहाँ यदुवंशी सेना के साथ कृष्ण बलराम ने युद्ध किया, सारी सेना को मारा, जरासंध को बंदी बनाया। बलराम जी ने हल गले में डाल के मूसल को उठाया, बोला कन्हैया इसको मार देता हूं। कन्हैया बोला नहीं, हमारे मामे का ससुर है, मारना मत इसको, छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दे, हम कहां जाके सारे बदमाश ढूंढेंगे, अपने आप पूरी दुनिया से बदमाशों को यहां लाएगा, हम यहीं बैठे घर में इनको मारते रहेंगे। तो जरासंध को बड़ा लज्जा आई कि मेरे को मारने से नहीं छाड़ दिया, और फिर दोबारा सेना लेके 17 बार सेना लेकर आया, 17 बार हरा के गया। 18 बार ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों आज पूजा ऐसी करो मेरी विजय होगी तो आपको गाय जमीन भूमि दूंगा, और मैंने हरा दिया तो सबका गर्दन काट दूंगा। और दूसरी तरफ से काल यवन, जिसको ये वरदान था कि एक दिन जदुवंशी उसके सामने भागेंगे, उसने तपस्या करके ये वरदान पा लिया था, एक तरफ से आक्रमण किया काल यवन ने। भगवान श्री कृष्ण आगे भागे, काल यवन पीछे भागा, और भागते भागते जब धौलपुर में पहुंचे, जो आज धौलपुर है, वहां एक गुफा में कृष्ण जाके अपना पीला पीतांबर एक सोए हुए मुचकुंड नाम के राजा के ऊपर डाल के अंदर बैठ गए। और ये काल यवन वहां पहुंचा और कहा यहां सो रहा है, डरता है, लात मारी और मुचकुंड उठा, आंख खोली और काल यवन भस्म हो गया। मुचकुंड को देवताओं ने कहा था तेरे नींद से जो तुम्हें उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान काल यवन को अपने हाथों से मारना नहीं चाहते थे, और मुचकुंड को भगवान ने दर्शन दिया, मुचकुंड ने भगवान को पहचान लिया। भगवान ने कहा आप जाके तुम उत्तराखंड में मेरी तपस्या करो, अगले जन्म में मेरे पास आ जाना। भगवान वापस आया, कृष्ण बलराम जी अब क्या करें, ये मुचकुंड की सेना को, ये धन अपने काम का नहीं है, ये मलेच्छों का धन हमारा सारा बिगाड़ा कर देगा। और देखो ये एक तरफ से जरासंघ फिर एक बड़ी सेना लेके आया, आगे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, गोविंदाय नमः, गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय नमः, अरे भगवान आपने गौ और ब्राह्मण की हित करने के लिए अवतार लिया है। भगवान ने कहा बलराम जी इस बार अगर जरासंध को हरा दिया तो ये ब्राह्मणों को मार देगा और हमारे अवतार का उद्देश्य बिगड़ जाएगा, इसलिए अब ऐसे करते हैं, हे विश्वकर्मा एक और सुंदर नगरी समुद्र के बीच में बनाओ, योग माया सब जदुवंशियों को जाके द्वारका में स्थापित कर दो, बाकी 2 भाई बचे। और जरासंध के आगे से भागे, सारी ही संपत्ति छोड़ के भागे, और जरासंध सेना के साथ पीछे भागा। आज भगवान का नाम हो गया रण छोड़ रहा है, रण को छोड़ के भागा है। लोग रण को छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कायर, लेकिन यहां तो रण छोड़ का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है द्वार गुजरात में रणछोड़ राय के मंदिर को भगवान दर्शन करने जाते हैं। भगवान यहां से गए गिरनार, और गिरनार के जो पर्वत है उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए, और इन्होंने कहा कि अब पर्वत के चारों ओर आग लगाते हैं, और पर्वत से भगवान कूदे और जाके द्वारका पहुंचे। आज ये मान्यता है कि वहां से द्वारका का क्षेत्र शुरू होता है। तो अब भगवान की यहाँ की लीला मथुरा की पूरी हुई, लेकिन मथुरा जाने से पहले भगवान ने जो वचन दिया था, पहला तो अक्रूर के घर गए बलराम जी को साथ लेकर। काका अक्रूर ने बड़ा स्वागत किया। भगवान ने कहा, अक्रूर जी आप एक काम करो, हस्तनापुर में जाके हमारी बुआ कुंती और उनके पांच बच्चे पांडवों का समाचार लेके आओ। और अक्रूर जी वहां गए, और कुंती महारानी ने कहा कि हम तो जैसे भेड़ियों के बीच में हिरणी फंस जाती है, ऐसे हम यहाँ हस्तनापुर में कौरवों के बीच में फंसे हुए हैं। और ऐसे लगा कि कुंती महारानी को कृष्ण सामने नजर आ गया हो, और कहा, हे कृष्ण, मेरे बालक और मैं आपके शरण में हूँ, अब आप हमारे नाथ हैं, आप हमारी रक्षा करना। भीष्म पितामह से मिला, धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं समझता हूँ अक्रूर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं पुत्र मोह में अंधा हूँ, और मैं जानता हूँ कि कृष्ण का अवतार पांडवों की रक्षा के लिए हुआ है, आगे जो भगवान की इच्छा है वो होगा। अक्रूर ने ये समाचार आके दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने साथ उद्धव को लेके कुब्जा के घर में गए, उसको कहा था तुम्हारे पास आएंगे। और कुब्जा के घर में जाने का भगवान का एक ही उद्देश्य था कि जब मैं कुब्जा का वचन दिया हुआ पूरा करता हूँ तो गोपियां मैं वापस आपके पास भी जरूर आऊंगा। मैंने वचन दिया है तो मैं संसार वालों का वचन पालन करता हूँ, तो मेरे प्रिय भक्तों का कैसे नहीं करूंगा। और तीसरा, भगवान ने अपने ब्रजवासियों के पास उद्धव को संदेश देकर भेजा कि जाके नंद बाबा और यशोदा मैया को हमारा शुभ समाचार देना, और गोपियां आपके कहने से समझेंगी नहीं, आप ये मेरी चिट्ठी पढ़ के उनको सुना देना। उद्धव का ब्रज में गमन का कथा तो इतना बहुत सुंदर है कि वो कथा अब आज यहाँ कहने का समय तो नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों का उद्धव ने प्रेम जो कृष्ण की प्रति देखा, बृहस्पति का शिष्य ज्ञान में प्रवीण उद्धव को भगवान ने भेजा ही इसलिए था ब्रज में कि गोपियों के प्रेम को सीख के आए। और कुछ महीने वहाँ रहने के बाद उद्धव लौट के कहता है कि भगवान मेरे को तो ब्रज के अंदर कोई औषधि बना दो, कोई गुलम लता बना दो, ये ब्रजवासियों के चरणों की कभी धूली लग गई, कहीं औषधि ब्रजवासियों के काम आ जाएगी तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। ब्रह्मा ये कहता है कि ब्रज में तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, ब्रज की सीमा के ऊपर कहीं घास बन जाऊं, आने जाने वाले भक्तों के चरणों की रज मिलेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा उद्धव का संदेश, उद्धव ने क्या वहां देखा है ये तो आज वर्णन करने का समय नहीं है अपने पास। अब यहाँ से द्वारका भगवान पहुंचे हैं तो पहले बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ है, और उसके बाद रुक्मणी की चिट्ठी लेकर पंडित जी पहुंचा है द्वारका में। तो भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं, इस ब्राह्मण को आते देखा, उठ के खड़े हो गए, ब्राह्मण को आसन पे बिठाया और फिर अपने घर ले गए, चरण धोए और ब्राह्मण के चरण दबाते हुए भोजन करा के पूछते हैं, आप इतने दूर से आए, आप ब्राह्मण सब वहाँ पूजा पाठ करने में कोई आपको तकलीफ तो नहीं है, दूर आए हैं क्या, आपका समाचार है मुझे दीजिए। ब्राह्मण कहता है, ये चिट्ठी मेरे को महाराज भीष्मक की पुत्री भीष्मक क्षीर सागर है, उसके अंदर से निकली हुई लक्ष्मी है रुक्मणी, लेकिन उसका बड़ा भाई रुक्मी विष है। रुक्मणी ने लिखा है कि श्री कृष्ण उसने चिट्ठी दी कि उसने ये दिया है मैं आपको दे दूं। भगवान ने चिट्ठी को खोल के वापस ब्राह्मण को दी के पढ़ो, क्यों कि ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने विश्वास किया, द्रौपदी ने उसको विश्वास, रुक्मणी ने उसको विश्वास करके भेजा था तो भगवान ने उसके ऊपर विश्वास किया। उसमें लिखा था कृष्ण आपकी सुंदरता का, वीरता का, मधुरता का, जो आपका शील स्वभाव है, इसका मैंने हमारे पिता की सभा में आने जाने वाले नारद आदि ऋषियों से सुना है। और ये सुन के मैंने संकल्प किया है कि आपको मैं पति के रूप में वरण करूंगी। ये है पहला सिद्धांत। भगवान को देख के रुक्मणी ने पसंद नहीं किया, सुन के पसंद किया। ये कथा सुनने से हमारे को भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। फिर उस रुक्मणी ने क्या किया, किसी ब्राह्मण से चिट्ठी भिजवाई, ऐसे हमको किसी संत साधु गुरु के माध्यम से भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए चिट्ठी भेजनी चाहिए, वो गुरुजनों का सहारा लेना चाहिए। और आगे रुक्मणी निकल लिखती है कि शीलवती, कुलवती, रुचिर, आनंद, सुंदर आपके समान हूं, और इस वक्त मेरे विवाह के लिए बारात पहुंच चुकी है। चेदी नरेश शिशुपाल के साथ मेरे भाई रुक्मी ने जबरदस्ती मेरा लगन कराना चाहता है, और मैं आपको कहती हूं कि मैं इस जन्म में आपको प्राप्त न कर पाई तो मैं प्राण दे दूंगी, और मैं नहीं चाहती हूं कि शेर का भाग भेड़िया ले जाए। अगर आपको लगे कि आप विवाह के मंगलमय मुहूर्त में युद्ध करके मुझको कैसे ले जाएंगे, तो मैं आपको रास्ता भी बताती हूं। हमारी परंपरा है कि हम कोंडनीपुर में देवी की पूजा के लिए विवाह के दिन जाते हैं। उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं होगा, चंद बूढ़ी ब्राह्मणी होगी, कुछ सहेलियां होगी, वहां से आप मेरा अपहरण कर सकते हैं। ये पहला विवाह रुक्मणी ने किया, गंधर्व विवाह प्रेम का। और फिर प्रस्ताव भेज रही है राक्षस विवाह का कि मुझे अपहरण करके ले जाओ। और ब्राह्मण ने जब ये चिट्ठी पढ़ के पूरी की, श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी की प्रति मुझे भी बहुत स्नेह और प्रेम है, नींद मेरे को भी रात को नहीं आती है, अभी इस वक्त चलो चलते हैं। और भगवान ने अपने रथ को बुलाया, दारू और ब्राह्मण को हाथ दे के रथ में बिठाया और सुबह कोंडनीपुर पहुंच गए। सुबह बलराम जी उठे, कहे कि अरे कृष्ण कहाँ है, सुबह शंख नहीं बजा। कृष्ण का शंख बजता है, पता लगता है कृष्ण है। पता लगा रात ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण भी नहीं है। कहां से ब्राह्मण आया था, अवंतिका से, अरे विदर्भ देश से। विदर्भ देश में तो वहां तो विवाह होना है, वहां तो शिशुपाल आया है, उसके सारे साथी जरासंध आदि, वो तो हमारे बड़े शत्रु है, अकेले कृष्ण को कैसे जा। एक अक्षौणी सेना लेके तीव्र गति से वहां से बलराम चला है, और वो भी कोंडनीपुर आके पहुंच गया भगवान के प्रेम के कारण, उसके हित के लिए। और महाराज भीष्मक कहता है मैंने पत्रिका भेजी थी, अच्छा हुआ यदुवंशी आ गए, लेकिन पत्रिका रुक्मी ने भेजी नहीं थी। लेकिन अब सब लोग परेशान है कि ये कौन सी बारात में आए, शिशुपाल की मासी का लड़का है, उनकी तरफ से आए हैं कि हमारी दावत में आए हैं। लेकिन महाराज भीष्मक ने उनका बहुत अच्छा व्यवस्था किया। लेकिन वहां बात चलने लगी कि ये क्यों आए हैं, किसने इसको बुलाए हैं, और ये आए हैं तो खतरा है। अभी कल सावधानी से दोनों तरफ से सेना हाथी घोड़ों पे खड़े होके अस्त्र शस्त्र से रहना, रुक्मणी जब पूजा करने जाती है तब खतरा है, और सब खड़े हो गए। और ब्राह्मण अब रुक्मणी कहती है अब सुबह पूजा होने वाली है, रात खत्म होने वाली है, ब्राह्मण आया नहीं है। तब रुक्मणी की आंख पड़की और अच्छे स्वगन होने लगे, तब तक ब्राह्मण प्रवेश किया। और ब्राह्मण को खुश देख के रुक्मणी ने कहा ब्रह्मदेव बोलो, ब्राह्मण देवता नमस्कार। बोला बेटी भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। कहीं ब्राह्मण कहते हैं रक्षण लक्ष्मी थी रुक्मणी, उस दिन अगर कुछ ब्राह्मण को दे दिया होता, इतना ही कहा नमस्कार ब्राह्मण, और ब्राह्मण उसमें खुश होके चला गया। और दूसरे दिन रुक्मणी जा रही है पूजा करने के लिए, वो पुजारी कह रहे हैं कि देवी की पूजा, बोला देवी को प्रणाम, देवी की पूजा कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसे तो मन में कहती है। जब बाहर निकली है तो पहली बार ऐसे आंख उठा के देखा है, और उसके मुख की सुंदरता और तेज को और उसके कुंद जैसे दांतों को देखकर जितने सैनिक हाथी घोड़े पे थे वहां से मूर्छित होके अस्त्र शस्त्र के साथ ऐसे गिरे जैसे बेर 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 के फल से बेर गिरते हो, टप 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 सब ऐसे गिर पड़े केवल उसका दर्शन करके। और इतनी देर में वो देखती है कि रथ के ऊपर कृष्ण बीच में से आए हैं, और हाथ देख के रुक्मणी को रथ के ऊपर बिठाया है और रथ चला है, तब सैनिक उठे हैं, अरे 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 वो तो ले गया, वो तो ले गया। तो रुक्मणी कहती है ये सब क्या करेंगे। कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत करो, दाऊ जी है यहाँ, देख लेगा। अब थोड़ी देर के लिए तो कुछ लोग उतावले हुए शिशुपाल की ओर से, लेकिन आए थे बारात में, खाने आए थे भात, कौन खाएगा लात। यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई और ये यदुवंशी तो मारने शुरू किए, उठाया गदा बलराम जी ने, तो सब बाराती भागने लगे। तब जरासंध कहने लगा शिशुपाल 17 बार मैंने भी हारा था, एक बार हम हार गए तो कभी हमारा टाइम भी आएगा। उस वक्त भाई जो रुक्मणी का रुक्मी है कहते सुनो सुनो जाओ मत, मैं जाता हूँ, रुक्मणी को वापस नहीं लाया तो वापस आऊंगा नहीं, मैं कभी कौंडिन्यपुरी वापस नहीं आऊंगा, विदर्भ देश ही छोड़ दूंगा। ये कहकर रुक्मी रथ के ऊपर चढ़ के गालियां देता हुआ कृष्ण को जा रहा है, जाके कृष्ण के पास पहुंचा है, अस्त्र शस्त्र चलाना है, भगवान उसका धनुष तोड़ा, रथ तोड़ा, घोड़े मारे, तलवार लेके सामने आया, तलवार गिरा दी और पकड़ के रथ के खंभे से बांधा, आधे बाल काटे और बिठा दिया। रुक्मणी कहती है मारो मत, बोला चिंता नहीं, तुम्हारे कपड़े दे दो, थोड़ा सा दुपट्टा इसको बांध के रखते हैं। बलराम जी सबको हरा के वापस आए। बलराम जी ने देखा ये तो छोटे भाई की पत्नी पहले दिन मैं मिल रहा हूं और मेरे अपने साले का इसने ये हाल किया है, अब मैं क्या करना चाहिए। तो एकदम कृष्ण को डांटते हैं, बोला कृष्ण ये यदुवंश की मर्यादा थोड़ी है कि साले के साथ इतनी बेइज्जती का श्लोक नहीं करना, अपमान क्यों कर दिया आपने ऐसे। और कृष्ण की ओर से देख के फिर रुक्मणी को कहते हैं हे विदर्भी, हे भीष्मक नंदने, ये क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है, देखो कितना कठोर है, क्षत्रिय धर्म के भाई भाई से लड़ता है और साले का भी आधा बाल काटना पड़ता है, हमको बड़ा दुख हो रहा है। अब दोनों को शांत किया और कहा छोड़ दो इसको, इसको मत मारो। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोला क्यों मुस्कुरा रहे थे। अब बलराम कहता है रुक्मी को छोड़ दो और जब विवाह करने जाएंगे प्रद्युम्ना का अनिरुद्ध का, तब रुक्मी को अपने हाथ से बलराम मारेंगे। बोला आप मत मारो, मैं मारूंगा बाद में। और यहां से रुक्मणी को भगवान लाए, एक स्थान है उसको, आप जब द्वारका से सोमनाथ जाते हैं तो रास्ते में माधवपुर आता है, माधवपुर के स्थान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का देवता वाला विवाह हुआ, जिसमें महाराज भीष्मक कन्यादान करने के लिए आए और फिर वहां से तीसरा विवाह, पहला गंधर्व, दूसरा राक्षस, तीसरा देव विवाह हुआ। और फिर अब भगवान की पहली रानी आ गई रुक्मणी, और फिर समंतिक मणि के बहाने सत्यभामा दे दी सत्राजित ने अपनी बेटी विवाह में, और सत्य मणि को ढूंढते हुए जाम्बती मिल गई, ये तीन महारानियां हो गई। और भगवान यहाँ इंद्रप्रस्थ दिल्ली आए हुए थे अर्जुन के साथ, जमुना के किनारे कालिंदी को देखा, पूछा कि जाओ क्यों बैठी है, पूछ के आए हो अर्जुन। अर्जुन ने कहा देवी क्या कर रही हो। बोला श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना है। भगवान ने कहा ले आओ, ये ज्योति आ गई। और फिर अवंती का नगरी से मित्रावेंदा को और दक्षिण भारत से लक्ष्मणा को भगवान सब अपहरण करके एक एक लाए, और एक जगह तो नांगन जिति के लिए 7 बैलों को एक बाल में वश में करके पिता से बड़ा जेहज लेके आए, 8 मुख्य पटरानियां हो गई और 16,100 भौमासुर के कैद में थी। भगवान ने वहां से जब उसको आजाद कराया तो उनने कहा कि अब समाज में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, न हमारे माता पिता करेंगे न और कोई करेगा। भगवान ने कहा जहां समाज में आपका कोई नहीं है तो आपका मैं हूं, आप द्वारका चलिए, मैं आप सबको स्वीकार करता हूं। भगवान ने ये उस वक्त के समय में बहुत बड़ी क्रांति की और ऐसे 16,108 रानियां सबके लिए भगवान ने महल बना दिए। और उसके बाद भगवान के एक एक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुए, और इनका तो बहुत बड़ा वर्णन है, आप पुस्तक जरूर ले जाइएगा, वो कृष्ण छोटा एक ही किताब है, वो जितने भाग्यशाली ले जा सको उतना अच्छा है, ये लीला रोज पढ़ना, और आगे ये बरसात के महीने में 4 महीने चतुर्मास में पढ़ोगे तो आप समझ लो कि अश्वमेध यज्ञ से बड़ा पुण्य हो जाएगा, वो उसके बराबर कहना भी पाखंड है, क्योंकि भगवान की लीला के बराबर कुछ भी नहीं है। अब हम कथा भगवान श्री कृष्ण का, एक बार युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में आना हुआ अपने रानियों के संग, और यहां से नंद बाबा, यशोदा और राधा रानी आदि आए। ये भगवान श्री कृष्ण का और ब्रजवासियों का मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ। इस मिलन के अंदर यशोदा मैया के आंखों से आंसू और स्तन से दूध कृष्ण को गोद में बिठा दिया है। गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया है और गोपियां कहते नहीं, अब रथ तुम्हारा वृंदावन जाएगा, उसको रथ यात्रा कहते हैं। लगभग कुरुक्षेत्र से गोपियां कृष्ण के रथ को खींच के वृंदावन ले जाना चाह रही थी और यहां राधा रानी ने गाया है कि कृष्ण तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। पहले जमुना जी के तट पे, बंसी वट पे मिलते थे, उस वक्त मिलने में जो बरस था वो आज कुरुक्षेत्र के मिलने में नहीं आ रहा है। यहां राधा रानी अकेली थी कुरुक्षेत्र में, कृष्ण मिले थे लेकिन उसको वो आनंद का अनुभव नहीं हुआ है। यहां वसुदेव जी ने सब ब्राह्मणों से यज्ञ कराया है और वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तीर्थ में जाओ तो साधुओं का संग करना चाहिए, केवल घूम के आना ठीक नहीं है। और फिर दो अध्यायों में द्वारका में पोरबंदर से सुधामा ब्राह्मण को पत्नी सुशीला ने कहा कि दूसरे तो द्वारकाधीश तुम्हारा मित्र है, सहपाठी है, दूसरे को तो दान मांगने वाले को दान मिलता है, ये तो कन्हैया अपने आप को दे देता है। तो सुधामा अपनी पत्नी को कहा, मित्र है, जा रहा हूं तो कुछ तो भेंट दे दो। तो पत्नी कहती है, भेंट में क्या दूं, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं जा रही हूं। चार पड़ोसियों के घर में गई और चार घर से जाके चिवड़ा लाई। चिवड़े का मतलब क्या कहते हैं, चिवड़े को पुआ, वो सूखा हुआ पुआ, एक के घर से लाल मिला, एक के घर से पीला मिला, एक से घर से मोटा मिला, एक से घर से छोटा मिला। तो उसको एक पोटली में बांध के दे दिया ये पोहे। ये बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को सुधामे की गरीबी का इतिहास पोहों की पोटली में था। सुधामा जैसे पहुंचा है द्वारका में, द्वारका का वैभव देखा है, दरवाजे के पास पहुंचा है, श्री कृष्ण को दरबान ने बता दिया कि एक ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुधामा बता रहा है, सर के ऊपर पगड़ी नहीं है, पांव में जूता नहीं है, फटे कपड़े हैं लेकिन धुले हैं, भगवान भागते हुए रुक्मणी के महल से निकले। दरवाजे के ऊपर सुधामा को आलिंगन कर करते, अरे मित्र, इतना दिन तुमने आने में लगा दिया, कब से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और ऐसे गलत भा ऐसे भा, अपने आलिंगन में भरे हुए ले आकर अपने सिंहासन पे बिठाया। रुक्मणी पानी में झारी भर के जल लाई है और भगवान हाथों से जल तो कम है और आंखों से आंसू से ज्यादा पांव धुला दिए सुधामे के। फिर सुधामे को भोजन कराया है और रात को सुधामे के साथ बहुत सुंदर बचपन की बातें करने लगे हैं गुरुकुल की। दूसरे दिन बाकी रानियों को पता लगा कि रुक्मणी को तो ब्राह्मण की सेवा का मौका मिल गया, अब तो सारी रानियां कहती हैं हम भी सुधामा की पूजा करेंगी, सब भी पेड़ पेड़ा घर से लेके थाली के अंदर और फूल और अगरबत्ती लेके आई और कहा कि हमको पूजा करनी है। एक आई, सुधामा ने कहा सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, दूसरी आई, तीसरी आई, आठ हुई, सुधामा का हाथ थका, जबान थकी, भो भो करने लगा। भगवान को बोला और कितनी है, बोला बाकी 16,100। एक एक पेड़ा सब खिलाएंगी तो होगा क्या, भगवान ने कहा ब्राह्मण चिंता मत करो। ये जो प्रसंग सुधामा का है, ये भगवान अपने भक्तों का प्रालब्ध कर्म भी बदल देते हैं। सुधामे के पास दरिद्रता थी लेकिन भगवान की कृपा से वो धनियों से बड़ा धनी था, क्योंकि गोविंद उसका धन था। सुधामे ने भोग नहीं किया, भगवान की महिमा गाई। और इसके आगे प्रसंग तो बहुत सारे हैं लेकिन समय पूरा हो रहा है। 11वें स्कंद को मुक्ति का स्कंद कहते हैं, उसमें भगवान ने वहां से बलराम जी पृथ्वी में नीचे शेष चले गए। भगवान जाके वीरावल में छोटे एक पीपल के पेड़ को पीठ दे के बैठे, उल्टे पांव के ऊपर सीधा पांव रखा, उस वक्त उद्धव को उपदेश दिया, मैत्रेय को संदेश दिया और दारुक को कहा कि अर्जुन को कहो कि द्वारका से मेरी रानियों को लेके चले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारका को समुद्र वापस ले लेगा। और फिर भगवान के मुख को हिरण का मुंह 12,000 श्लोक कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, सारे पापों को जड़ से नाश कर देगा। बोला पापों का फल ताप कैसे जाएगा? तब कहते हैं प्रणामो दुख शमनम, जो पापों का फल दुख है वो भगवान को प्रणाम करने से, भगवान के सामने माथा टेकने से, हरि को माथा टेकने से सब दुख हर लेता है। इसलिए भागवत के अंत में दो सूत्री प्रोग्राम है, एक संकेत